यहोशू अध्याय एक। यहोशू के लिए यहावे का आयोग। यहावे के सेवक मोशे के मरने के बाद यहावे ने नून के पुत्र यहोशू से कहा, मोशे मेरे सेवक की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम उठो और इन सभी लोगों के साथ यर्दन नदी के उस पार जाओ जिसे मैं इसराइलियों को दे रहा हूँ, और जहां जहां तुम पांव रखोगे वह जगह मैं तुम्हें दूंगा, ठीक जैसा मैंने मोशे से कहा था। लबानोन के निर्जन प्रदेश से महानद फरात तक और हित्तियों के देश से लेकर महासागर तक सब देश तुम्हारा होगा, और कभी भी कोई तुम्हारा विरोध ना कर सकेगा। ठीक जिस प्रकार मैं मोशे के साथ रहा हूँ उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी रहूंगा, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। इसलिए दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम ही इन लोगों को उस देश पर अधिकारी ठहराओगे जिसको देने का वादा मैंने पहले किया था। तुम केवल हिम्मत और संकल्प के साथ बढ़ते जाओ और मेरे सेवक मोशे द्वारा दिए गए नियम सावधानी से मानना, उससे ना तो दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर, ताकि तुम हमेशा सफल रहो। तुम्हारे मन से व्यवस्था की ये बातें कभी दूर ना होने पाए, लेकिन दिन रात इसका ध्यान करते रहना कि तुम उन बातों का पालन कर सको जो इसमें लिखी गई है, तब तुम्हारे सब काम अच्छे और सफल होंगे। मेरी बात याद रखो, दृढ़ होकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, ना घबराना ना उदास होना, क्योंकि यहावे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, चाहे तुम कहीं भी जाओ यहावे तुम्हारे साथ है। फिर यहोशू ने अधिकारियों को यह आदेश दिया, छावनी में जाकर लोगों को यह आज्ञा दो, 3 दिन के भीतर तुम्हें यर्दन नदी को पार करके उस देश में जाना है जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें देने वाले हैं। तब अपने लिए भोजन वस्तुएं तैयार कर रखो। यहोशू ने रियूबेन गाद तथा मनशशे के आधे गोत्र से कहा, यहावे के सेवक मोशे के आदेश को मत भूलना जो उन्होंने कहा था, यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें आराम के लिए एक स्थान देंगे। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे बालक तथा तुम्हारे पशु उस भूमि पर रहेंगे जो मोशे द्वारा यर्दन के उस पार दी गई है, किंतु तुम्हारे सब योद्धाओं को अपने भाई बंधुओं के आगे जाना होगा ताकि वे उनकी सहायता कर सके। जब तक यहावे तुम्हारे भाई बंधुओं को आराम ना दे तथा वे भी उस भूमि को अपने अधिकार में ना कर ले जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर उन्हें देंगे, फिर तुम अपने देश को लौट सकोगे और उस भूमि पर अधिकार कर सकोगे जो यहावे के सेवक मोशे ने तुम्हें यर्दन के उस पार दी है। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, आपने जो कहा है हम उसको मानेंगे, आप हमें जहां भेजेंगे हम वहां जाएंगे। जिस प्रकार हम मोशे की सब बातों को मानते थे उसी प्रकार आपकी भी सब बातों को मानेंगे। बस इतना हो कि यहावे परमेश्वर आपके साथ वैसे ही बने रहे जैसे वह मोशे के साथ थे। यदि कोई भी आपकी बातों का विरोध करेगा या आपके द्वारा दिए गए समस्त आदेशों का पालन ना करेगा उसको मार दिया जाएगा। यहोशू अध्याय 2। राहब द्वारा गुप्तचरों को आश्रय दिया जाना। नून के पुत्र यहोशू ने शित्तीम नामक स्थान से 2 व्यक्तियों को चुपके से यरीखो में यह कहकर भेजा कि जाओ उस देश का भेद लो। वे गए और एक नगर वधु के घर में जाकर ठहरे जिसका नाम राहब था। किसी ने यरीखो के राजा को बताया, आज रात इज़राइल वंशज हमारे देश की जानकारी लेने यहाँ आ रहे हैं। यरीखो के राजा ने राहब को संदेश भेजा, जो पुरुष तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं उन्हें बाहर लाओ, वे हमारे देश का भेद लेने आए हैं। किंतु वह उन दोनों को छिपा चुकी थी। उसने राजा के सेवकों को उत्तर दिया, जी हाँ यह सच है कि यहाँ 2 व्यक्ति आए थे, किंतु मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ से आए थे, और रात को जब फाटक बंद हो रहा था तब वे दोनों चले गए। मुझे मालूम नहीं कि वे किस ओर गए हैं, जल्दी उनका पीछा करेंगे तो आप उन्हें पकड़ लेंगे। राहब ने उन्हें छत पर ले जाकर उन्हें सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया जो उसने छत पर इकट्ठा कर रखी थी। तब वे उनका पीछा करने के उद्देश्य से यर्दन के घाट के मार्ग पर चल पड़े। जैसे ही ये व्यक्ति पीछा करने के लिए नगर के बाहर निकले, नगर का द्वार बंद कर दिया गया। इससे पहले कि वे सोने के लिए जाते, राहब ने छत पर उनके पास आकर उनसे कहा, मैं समझ गई हूँ कि यहावे ने यह देश आपके अधीन कर दिया है। समस्त देशवासियों पर आप लोगों का डर छा चुका है, वे आपके कारण घबरा गए हैं। हमने सुना है कि कैसे यहावे ने लाल सागर का जल सुखा दिया था जब आप लोग मिस्र देश से निकल रहे थे, तथा यह भी कि यर्दन के पार अमोरियों के दो राजाओं सीहोन तथा ओग के राज्यों को आप लोगों ने पूरा नष्ट कर दिया। यह सुनकर हमारे हृदय कांप गए थे। आप लोगों के कारण हम में से किसी भी व्यक्ति में साहस ना रह गया, क्योंकि ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर ही है यहावे आपके परमेश्वर। आप मुझे अब यहावे के सामने वचन दीजिए कि जैसे मैंने आपको बचाया है, वैसे ही आप भी मेरे पिता के कुल के साथ दयावान रहेंगे। आप मेरे माता पिता तथा भाई बहनों और उनके समस्त संबंधियों को मृत्यु से बचाएंगे। तब गुप्तचरों ने राहब को आश्वासन दिया, यदि आप लोगों के प्राण ले लिए जाएंगे तो हमारे भी प्राण ले लिए जाएंगे। यदि आप हमारे यहाँ आने के उद्देश्य को गुप्त रखेंगी तो उस समय जब यहावे हमें यह देश दे देंगे, आप लोगों के प्रति हमारा व्यवहार दयावान एवं सच्चा होगा। राहब का घर शहर पना पर था। उसने खिड़की में से रस्सी के द्वारा उन दोनों को बाहर उतार दिया। राहब ने उन दोनों से यह कहा, आप पहाड़ की तरफ चले जाइए कि जो आपका पीछा कर रहे हैं आपको ना देख सके। वहां आप 3 दिन तक छिपे रहना जब तक वे लौट ना आए, फिर आप अपने मार्ग की ओर चले जाना। उन पुरुषों ने राहब से कहा, हम उस वायदे को पूर्ण कर पाएंगे जो हमने आपसे किया है। जब इस देश पर हमला करते समय हमें इस खिड़की में यह लाल रस्सी बंधी हुई मिले जिससे आपने हमें नीचे उतारा है, और आप इस घर में अपने माता पिता भाई बंधुओं तथा अपने पिता के परिवार के सब लोगों को एक साथ रखिए। जो कोई घर से बाहर निकलेगा उसकी मृत्यु का दोष उसी पर होगा, हम पर नहीं। किंतु जो कोई आपके साथ घर में होगा और यदि उसे मार दे तो उसकी मृत्यु का दोष हम पर होगा। इसके अलावा यदि आप हमारे यहाँ आने के विषय में किसी को भी बताएंगे तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। राहब ने उत्तर दिया, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। यह कहकर उसने उन्हें विदा कर दिया। वे अपने मार्ग पर चले गए। राहब ने वह लाल रस्सी खिड़की में बंधी रहने दी। वहां से वे पर्वतीय क्षेत्र में निकल गए और वहां 3 दिन तक उनसे छिपे रहे, जब तक वे लोग उनका पीछा कर रहे थे लौट ना गए, जिन्हें उनकी खोज करने के लिए कहा गया था। इन भेदियों को सारे मार्ग पर ढूंढते रहे और उन्हें नहीं पाया। तब वे दोनों पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर लौट गए। नदी पार कर वे नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचे और उन्हें सब बात बताई। उन्होंने यहोशू से कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यहावे ने यह देश हमें दे दिया है, इस कारण सारे लोग हमसे डर गए हैं। यहोशू अध्याय 3। इसराइलियों द्वारा यर्दन पार करना। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर यहोशू एवं इसराइल वंशज शित्तीम से चलकर यर्दन गए, और उसे पार करने के पहले उन्होंने वहां पड़ाव डाला। 3 दिन बाद नायक शिविर के बीच से होते हुए गए और उन्होंने लोगों को कहा, जब यहावे परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेवीय पुरोहित उठाए हुए देखो, तब अपने अपने स्थान से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। किंतु तुम्हारे तथा संदूक के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रहे, इसके पास ना जाना। तुम ध्यान रखना कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि इस मार्ग पर तुम पहले कभी नहीं गए हो। लोगों से यहोशू ने कहा, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल यहावे तुम्हारे बीच आश्चर्य के काम करेंगे। पुरोहितों ने यहोशू से कहा, आप वाचा का संदूक लेकर लोगों के आगे आगे चले। तब उन्होंने वाचा का संदूक उठाया और लोगों के आगे आगे चलने लगे। यहावे ने यहोशू से कहा, आज वह दिन है जब मैं तुम्हें इसराइल की दृष्टि में आदर का पात्र बनाऊंगा, और उन्हें यह मालूम हो जाएगा कि जिस प्रकार मैं मोशे के साथ था, ठीक वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम्हें वाचा का संदूक उठाने वाले को बताना होगा जब तुम यरदन नदी में पहुंचो तब तुम जल में सीधे खड़े रहना। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, यहां आकर यहावे अपने परमेश्वर का संदेश सुनो, तब तुम समझ पाओगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे बीच में है और वही तुम्हारे सामने से कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, अमोरियों तथा यबूसियों को भगा देंगे। ध्यान रखना कि प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे यरदन में पहुंच रहा है। तब इसराइल के हर एक गोत्र से 12 व्यक्ति अलग करो, जो हर गोत्र से एक एक पुरुष हो। जैसे ही यहावे की वाचा का संदूक उठाने वाले पुरोहितों के पांव यरदन में पड़ेंगे, यरदन का जल बहना रुक जाएगा तथा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। यह फसल काटने का समय था। इस समय यरदन नदी में बाढ़ की स्थिति हुआ करती है। जब इसराइल वंशज यरदन पार करने के लिए निकले, तब पुरोहित वाचा का संदूक लेकर लोगों के आगे जा रहे थे। पुरोहितों के पांव जैसे ही जल में पड़े, ऊपर से आ रहा जल बहना रुक गया और दीवार सा ऊंचा उठ गया। यह आदम नामक नगर था जो जारेथान के पास है। इससे अराबा सागर, जो लवन सागर की ओर जाता है, वहां का जल पूरा सूख गया और इसराइली यरीखो की ओर पार हो गए। यहावे की वाचा का संदूक लेकर पुरोहित यरदन नदी के बीच में सूखी भूमि पर तब तक खड़े रहे जब तक सब इसराइलियों ने यरदन नदी को पार ना किया। यहोशू अध्याय 4। जब सब इसराइली वंशज यरदन नदी के पार हो गए, तब यहावे ने यहोशू से कहा, हर गोत्र से एक एक व्यक्ति करके 12 व्यक्ति अलग करो और उनसे कहो, यरदन से 12 पत्थर उस स्थान से उठाओ जहां पुरोहित खड़े थे। इन पत्थरों को अपने साथ ले जाओ और उन्हें उस स्थान पर रख देना जहां तुम आज रात ठहरोगे। तब यहोशू ने इसराइल के हर गोत्र से एक एक व्यक्ति चुने और ऐसे 12 व्यक्तियों को अलग किया और उनसे कहा, तुम्हारे परमेश्वर यहावे की वाचा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर अपने कंधे पर रखें। यह तुम्हारे लिए यादगार होगा। जब तुम्हारे बच्चे इन पत्थरों के बारे में पूछे, तब तुम उन्हें बताना, यहावे की वाचा के संदूक के सामने यरदन का जल बहना रुक गया था और जब इसे यरदन के पार ले जाया जा रहा था, तब यरदन का जल दो भाग हो गया था। तो ये पत्थर हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगे। इसराइल वंशजों ने वही किया जैसा यहोशू ने उनसे कहा था। उन्होंने यरदन के बीच से 12 पत्थर उठा लिए, इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार। उन्होंने वे पत्थर ले जाकर तंबू में रख दिए। यहोशू ने भी 12 पत्थर यरदन के बीच उस जगह पर रखे जहां पुरोहित वाचा का संदूक लिए खड़े थे, जो आज तक वही है। यहावे द्वारा यहोशू को कहे अनुसार संदूक लिए हुए पुरोहित यरदन के मध्य में तब तक खड़े रहे जब तक सब लोगों ने नदी को पार ना कर लिया। यह उस आदेश के अनुसार था जो मोशे द्वारा यहोशू को दिया गया था। जब सभी पार हो गए, तब यहावे की वाचा के संदूक को लिए हुए पुरोहित सब लोगों के आगे चले। मोशे के कहे अनुसार रियूबेन, गाद तथा मनशशे का आधा गोत्र युद्ध के लिए हथियार लेकर इसराइल वंशजों के आगे चला। इनकी संख्या लगभग 40,000 थी, जो युद्ध के लिए पूरे तैयार थे। यहावे की उपस्थिति में ये युद्ध के लिए आगे बढ़े और यरीखो के पास मैदान में पहुंचे। यह वह दिन था जब यहावे ने यहोशू को इसराइलियों के बीच आदर के साथ ऊपर उठाया, जिस प्रकार अपने जीवन काल में मोशे आदर के योग्य थे। यहावे ने यहोशू से कहा, वाचा का संदूक उठाने वाले पुरोहितों से कहो कि वे यरदन नदी से बाहर आ जाए। तब यहोशू ने पुरोहितों से कहा, यरदन से बाहर आ जाए। उस समय ऐसा हुआ कि जैसे ही यहावे की वाचा का संदूक लिए पुरोहित यरदन से बाहर आए तथा उनके पांव सूखी भूमि पर पड़े, यरदन नदी फिर से पहले जैसी बहने लगी। यह पहले महीने का 10वां दिन था जब लोग यरदन नदी पार कर निकल आए और गिलगाल में यरीखो के पूर्व में अपने पड़ाव डाल दिए। यरदन में से उठाए गए वे 12 पत्थर यहोशू ने गिलगाल में खड़े कर दिए। इसराइल वंशजों से यहोशू ने कहा, जब भविष्य में तुम्हारे बच्चे अपने पिता से यह पूछे, क्या अर्थ है इन पत्थरों का, तब तुम अपने बच्चों को यह बताना, इसराइल ने यर्दन नदी को सूखी भूमि पर चलते हुए पार किया था, क्योंकि यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने नदी पार करने तक यर्दन के जल को सुखाए रखा था। ठीक जिस प्रकार यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने लाल सागर को सुखा दिया था जब तक हम पार ना हो गए थे। पृथ्वी के सभी मनुष्यों को यह मालूम हो जाए कि यहावे का हाथ कितना महान है, ताकि यहावे तुम्हारे परमेश्वर के प्रति तुम्हारे मन में आदर और भय हो। यहोशू अध्याय 5। जब यर्दन नदी के पश्चिम में अमोरियों के सभी राजाओं तथा सभी कनानी राजाओं ने यह सुना कि किस प्रकार यहावे ने इसराइल वंशजों के लिए उनके यर्दन नदी से पार हो जाने तक यर्दन का जल सुखाए रखा था, उनका हृदय घबरा गया और उनसे बिल्कुल भी सामना करने का साहस ना था। नई पीढ़ी का खतना। फिर यहावे ने यहोशू से कहा, चकमक पत्थर की छुरियां बनाओ और इसराइलियों का खतना करना फिर से शुरू करो। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनाई और गिबियात हारालोथ नामक स्थान पर इसराइलियों का खतना किया। यहोशू द्वारा उनका खतना करने के पीछे कारण यह था, वे सभी जो मिस्र से निकले हुए थे, सभी पुरुषों और सभी योद्धाओं की मृत्यु मिस्र से आने के बाद निर्जन प्रदेश में रास्ते में ही हो चुकी थी। मिस्र से निकले सभी व्यक्तियों का खतना बाद में हुआ, किंतु वे सभी जिनका जन्म मिस्र से निकलने के बाद मार्ग में निर्जन प्रदेश में हुआ था, उनका खतना नहीं हुआ था। इसराइल वंशज 40 वर्ष तक निर्जन प्रदेश में फिरते रहे, जब तक पूरा राष्ट्र अर्थात वे योद्धा जो मिस्र से निकले थे नष्ट ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहावे के आदेश को नहीं माना। यहावे ने शपथ ली थी कि वह उन्हें वह देश देखने ना देंगे जहां दूध और मधु बहती है, जिसे देने का वायदा यहावे ने पूर्वजों से किया था। उनकी जगह पर यहावे ने उनकी संतान को बढ़ाया, जिनका खतना यहोशू ने किया, क्योंकि मार्ग में उनका खतना नहीं किया गया था। जब सबका खतना हो चुका और वे ठीक होने तक अपने तंबू में ही रहे, तब यहावे ने यहोशू से कहा, आज मैंने तुम पर मिस्र का जो कलंक लगा था उसे दूर कर दिया है, तभी से आज तक यह स्थान गिलगाल नाम से जाना जाता है। जब इसराइल वंशज गिलगाल में पड़ाव डाले हुए थे, उन्होंने माह के 14वें दिन यरीको के मरुभूमि में फसह उत्सव मनाया। फसह उत्सव के अगले ही दिन उन्होंने उस देश की भूमि की कुछ उपज, खमीर रहित रोटी तथा सुखाए हुए अन्न खाए। जिस दिन उन्होंने उस भूमि की उपज का आहार किया, उसके दूसरे ही दिन से मन्ना गिरना बंद हो गया। इसराइल वंशजों को मन्ना फिर कभी ना मिला, और कनान देश की उपज ही उनका आहार हो चुकी थी। यरीखो पर विजय। जब यहोशू यरीखो के निकट थे, उन्होंने जब दृष्टि ऊपर उठाई, उन्हें अपने सामने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा। यहोशू उनके पास गए और उनसे पूछा, आप हमारी तरफ के हैं या हमारे शत्रु के? उन्होंने उत्तर दिया, मैं किसी भी पक्ष का नहीं हूं, मैं यहावे की सेना का अधिपति और अब यहां आया हूं। यहोशू ने भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहा, महोदय मेरे प्रभु का उनके सेवक के लिए क्या आदेश है? यहावे के दूत ने यहोशू को उत्तर दिया, पांव से अपनी जूती उतार दो, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो वह पवित्र स्थान है। यहोशू ने वैसा ही किया। यहोशू अध्याय 6। इसराइलियों के कारण यरीखो नगर के फाटक बंद कर लिए गए थे, ना तो कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था। यहोशू से यहावे ने कहा, देखो मैंने उसके राजा और उनकी सेनाओं के साथ यरीखो को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तुम्हें सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर को पूरा घूमना होगा, यह तुम्हें 6 दिन तक करना होगा। संदूक के आगे आगे 7 पुरोहित नरसिंगे लिए हुए होंगे। 7वें दिन तुम्हें नगर के चारों ओर 7 बार घूमना होगा। पुरोहित तुरी फूकते रहेंगे। जब वे नरसिंगा देर तक फूकेंगे और तुम्हें तुरी का शब्द सुनाई देगा। तब सभी लोग ऊंची आवाज से जय जयकार करेंगे। तब यरीखो की दीवार गिर जाएगी और सभी व्यक्ति नगर में सीधे प्रवेश कर पाएंगे। नून के पुत्र यहोशू ने पुरोहितों को बुलाकर उनसे कहा, यहावे के वाचा के संदूक को उठा लो और आप में से 7 पुरोहित नरसिंगे लिए हुए उसके आगे आगे चलें। लोगों से यहोशू ने कहा, चलो आगे बढ़ो, तुम्हें नगर के चारों ओर घूमना है, सैनिक यहावे के संदूक के आगे आगे चले। यहोशू ने दिए आदेश के मुताबिक नरसिंगे लिए हुए 7 पुरोहित आगे बढ़कर यहावे के समक्ष नरसिंगे फूंकने लगे और उनके पीछे यहावे का संदूक था। नरसिंगे फूंकते हुए पुरोहितों के आगे सैनिक बढ़ गए और पीछे पीछे पुरोहित नरसिंगे फूंकते हुए चल रहे थे। यहोशू सैनिकों को यह आदेश दे चुके थे, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने को ना कहूँ तब तक तुम में से कोई भी ना तो जय जयकार करना, ना तुम्हारा शब्द सुनाई दे और ना तुम्हारे मुख से कोई भी आवाज निकले, तुम मेरे कहने पर ही जय जयकार करना। इस प्रकार यहोशू ने यहावे के संदूक को लेकर नगर के चारों ओर घुमाया। फिर वे लौट आए तथा तंबू में रात बिताई। अगले दिन प्रातः यहोशू शीघ्र उठे और पुरोहितों ने यहावे के संदूक को उठा लिया। यहावे के संदूक के आगे आगे चल रहे 7 पुरोहित 7 नरसिंगे लिए हुए लगातार नरसिंगे फूंकते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। अग्रगामी सैनिक उनके आगे चल रहे थे और यहावे के संदूक के पीछे हथियार लिए हुए सैनिक चल रहे थे। 7 पुरोहित लगातार नरसिंगे फूंकते जा रहे थे। दूसरे दिन भी वे नगर के चारों ओर घूमकर वापस तंबू में लौट आए। 6 दिन उन्होंने इसी प्रकार किया। 7वें दिन वे सवेरे उठ गए तथा उसी रीति से, परंतु 7 बार नगर के चारों ओर घूमे। केवल 7वें दिन ही वे 7 बार घूमे। 7वीं बार जब पुरोहितों ने नरसिंगे फूंके, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहावे ने यह नगर हमें दे दिया है। समस्त नगर एवं सभी कुछ जो नगर में है उस पर यहावे का अधिकार है। केवल राहब तथा जितने लोग उसके घर में होंगे जीवित रहेंगे, क्योंकि उसने उन दोनों को छिपा रखा था जिनको हमने भेजा था। तुम सब अर्पित की हुई वस्तुओं से दूर रहना, तुम उसका लालच ना करना। ऐसा ना हो कि तुम उनमें से अपने लिए कुछ वस्तु रख लो और इसराइलियों पर शाप और कष्ट का कारण बन जाओ। सोना, चांदी, कांस्य तथा लोह की सभी वस्तुएं यहावे के लिए पवित्र है, ये सभी यहावे के भंडार में रखी जाएंगी। पुरोहितों ने नरसिंगे फूंके और लोगों ने जय जयकार किया और नगर की दीवार गिर गई और लोग नगर में घुस गए और नगर पर हमला किया। नगर की हर एक वस्तु को उन्होंने पूरा नष्ट कर दिया। स्त्री पुरुष, युवा और वृद्ध, बैल, भेड़े तथा गधे सभी तलवार से मार दिए गए। उन दोनों व्यक्तियों को जिन्हें यहोशू ने नगर की छानबीन करने भेजा था, उनको यहोशू ने आदेश दिया, राहब तथा उसका सब कुछ वहां से निकाल लाओ ताकि उससे किया गया वायदा पूरा हो। तब वे दो व्यक्ति ने राहब, उसके पिता, उसकी माता, उसके भाई तथा उसकी पूरी संपत्ति को वहां से निकाल लाए। उन्होंने उसके संबंधियों को भी वहां से निकाला और इन सभी को इसराइल के पड़ाव के बाहर स्थान दिया। उन्होंने नगर को तथा नगर की सब वस्तुओं को आग में जला दिया। केवल सोना, चांदी, कांस्य तथा लोह की वस्तुएं यहावे के भवन के भंडार में रख दी। राहब और उसके पिता का पूरा परिवार तथा उसकी पूरी संपत्ति को यहोशू ने नष्ट नहीं किया। वे आज तक इसराइल के बीच रह रहे हैं, क्योंकि उसने यहोशू द्वारा यरीखो का भेद लेने भेजे गए लोगों को छिपा रखा था। तब यहोशू ने उनसे पवित्र शपथ करके कहा, यहावे के सम्मुख वह व्यक्ति शापित है जो इस नगर यरीखो का फिर से निर्माण करेगा। इसकी नींव रखने के समय वह अपना बड़ा बेटा खो देगा तथा इसके पूरा हो जाने पर छोटा बेटा मर जाएगा। यहावे यहोशू के साथ थे तथा उनकी प्रशंसा पूरे देश में फैल गई। यहोशू अध्याय 7। आखान का पाप। किंतु इसराइल वंश ने चढ़ाई हुई वस्तुओं पर लालच किया यहूदा गोत्र से आखान, जो कार्मी का पुत्र और जिमरी का पोता और जेरा का परपोता था, उसने चढ़ाई हुई वस्तुओं में से कुछ अपने लिए रख ली। इसराइल के प्रति यहावे का क्रोध भड़क उठा। यहोशू ने यरीको से कुछ व्यक्ति को अय नामक स्थान में भेजा। अय बेथेल के पूर्व में बेत आवेन के पास है। यहोशू ने उनसे कहा, जाकर उस जगह की जानकारी लो। उन्होंने जाकर अय की जानकारी ली और उन्होंने यहोशू को आकर बताया, जरूरी नहीं कि सभी लोग जाकर आक्रमण करें, केवल 2 या 3 हजार लोग काफी है अय पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि वहां कम ही लोग हैं। तब केवल 3 हजार व्यक्ति ही वहां गए, किंतु अय के निवासियों से उन्हें डरकर भागना पड़ा। अय के निवासियों ने लगभग 36 लोगों को मार दिया। उन्होंने शबारीम तक उनका पीछा किया और वहां उनको मार दिया। जब इसराइल के लोगों ने यह देखा तो वे बहुत भयभीत हो उठे और हिम्मत छोड़ दिए। इस पर यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वह यहावे की संदूक के सामने जाकर भूमि पर मुख के बल गिरे और शाम तक वहीं पड़े रहे। उनके साथ इसराइल के बुजुर्ग भी थे, उन्होंने भी अपने सिर पर धूल डाल ली। यहोशू ने प्रभु यहावे से विनती की, हे यहावे परमेश्वर, आप इन लोगों को यर्दन से पार क्यों लाए? क्या इसलिए कि हम अमोरियों के अधीन कर दिए जाए और हम नष्ट कर दिए जाए? अच्छा होता कि हम यर्दन के पार ही बस जाते। प्रभु, अब मैं क्या कहूँ? इसराइल अपने शत्रुओं के सामने से पीठ दिखाकर भागे हैं। अब कनानी और इस देश के सभी लोग यह सुनकर हमें घेर लेंगे और पृथ्वी से हमारा नाम मिटा डालेंगे। तब आप अपनी महिमा के लिए क्या करेंगे? तब यहावे ने यहोशू को उत्तर दिया, उठो, मुख के बल क्यों पड़े हुए हो? इसराइल ने पाप किया है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी जो मैंने उनसे कही थी। उन्होंने चढ़ाई हुई वस्तुएं अपने लिए रख ली हैं, उन्होंने चोरी की है, उन्होंने छल किया है। इस कारण इसराइल अपने शत्रुओं के सामने ठहर नहीं सके और शत्रुओं के सामने से भाग गए, क्योंकि वे शापित हो चुके हैं। मैं उस समय तक तुम्हारे साथ ना रहूंगा जब तक तुम अपने पास से वे अर्पण की हुई वस्तुएं नष्ट नहीं कर देते। उठो, लोगों को पवित्र करो और उनसे कहो, कल के लिए स्वयं को पवित्र करो, क्योंकि यहावे इसराइल के परमेश्वर ने यह कहा है, तुम उस समय तक अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सकोगे जब तक तुम अपने बीच में से चढ़ाई हुई वस्तुएं हटा नहीं दोगे। सुबह तुम अपने अपने गोत्र के अनुसार सामने आओगे। वह गोत्र जिसे यहावे पकड़ेंगे, वे परिवार के साथ सामने आएंगे, और वह घराना जिसे यहावे इशारा करेंगे, एक एक करके सामने आएंगे। तब वह व्यक्ति जो पकड़ा जाएगा, जिसके पास चढ़ाई हुई वस्तुएं हैं, उसको आग में डाल दिया जाएगा, वह और सब कुछ जो उसका है, क्योंकि उसने यहावे की वाचा को तोड़ा है तथा उसने इसराइल में निंदनीय काम किया है। सुबह जल्दी उठकर यहोशू ने इसराइल को गोत्रों के अनुसार इकट्ठा किया। फिर यहूदा गोत्र को बुलाया गया और उन्हें एक साथ बुलाया। फिर जेरियों के घराने को बुलाया। फिर उन्होंने जेरियों के घराने को व्यक्तियों के अनुसार एक साथ बुलाया। फिर उन्होंने व्यक्तियों के आधार पर उसके घराने को अलग किया और आखान चुना गया, जो कार्मी का पुत्र, जिमरी का पोता और जेरा का परपोता था। वह यहूदा के गोत्र से था। आखान से यहोशू ने कहा, मेरे पुत्र, मेरी विनती है कि यहावे इसराइल के परमेश्वर के महिमा को स्वीकार करो और उनकी वंदना करो। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है, मुझसे कुछ ना छिपाना। आखान ने यहोशू को उत्तर दिया, यह सच है कि मैंने जो कुछ किया है उसके द्वारा मैंने यहावे इसराइल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैंने लूटी हुई वस्तुओं में से 1 ब्राह्म वस्त्र, 2 किलो चांदी तथा 0.5 किलो सोने की ईंट को छिपा लिया था। मैंने इन्हें अपने तंबू की भूमि में छिपा रखा है। चांदी सबके नीचे रखी गई है। यहोशू ने कुछ दूतों को आखान के तंबू में भेजा। उन्होंने छिपाई गई वस्तुएं निकाली और चांदी सबके नीचे थी। तंबू से निकालकर सब कुछ वे यहोशू के पास ले आए और इन वस्तुओं को यहावे के सामने रख दिया। तब यहोशू एवं समस्त इसराइली मिलकर जेरा के पुत्र आखान को तथा उस चांदी, सोना तथा वस्त्र, उसके पुत्र पुत्रियों, उसके बैल, गधे, भेड़े, उसका तंबू और उसकी पूरी संपत्ति को आकोर की घाटी में ले गए और उससे यहोशू ने कहा, तुम हम पर यह संकट क्यों ले आए? आज यहावे तुम्हें संकट में डाल रहे हैं। और समस्त इज़राइल ने उनका पथराव किया और उन्हें आग में डाल दिया। उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ऊंचा ढेर लगा दिया जो आज तक वहां है। तब यहावे का गुस्सा शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आकोर घाटी पड़ गया। यहोशू अध्याय 8। आय पर विजय। फिर यहावे ने यहोशू से कहा, डरो मत और ना घबराओ, अपने साथ सब योद्धाओं को लेकर आय पर आक्रमण करो। मैंने आय के राजा, प्रजा और उसके नगर और उसके देश को तुम्हें दे दिया है। आय तथा उसके राजा के साथ तुम्हें वही करना होगा जो तुमने यरीखो तथा उसके राजा के साथ किया था। लूट की सामग्री तथा पशु तुम अपने लिए रख सकते हो। तब यहोशू अपने समस्त योद्धाओं को लेकर आय पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। यहोशू ने 30,000 वीर योद्धा चुने और उन्हें रात को ही वहां भेज दिया। उनसे यहोशू ने कहा, तुम नगर के पीछे छिप जाना, नगर से ज्यादा दूर ना जाना। तुम सब सावधान एवं तत्पर रहना। तुम्हारे वहां पहुंचने पर मैं अपने साथ के योद्धाओं को लेकर नगर पर आक्रमण करूंगा। जब नगर के लोग सामना करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब हम उनके सामने से भागेंगे। और जब वे पीछा करते हुए नगर से दूर आ जाएंगे, तब वे सोचेंगे, ये लोग पहले के समान हमें पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। तब तुम अपने छिपने के स्थान से उठकर नगर को अपने अधीन कर लेना। यहावे तुम्हारे परमेश्वर नगर को तुम्हें सौंप देंगे। फिर तुम उसमें आग लगा देना। तुम्हें यह यहावे के वचन के अनुसार करना होगा। याद रखना कि तुम्हारे लिए यह मेरा आदेश है। यह कहते हुए यहोशू ने उन्हें भेज दिया। वे अपने छिपने के जगह पर गए और वे बेथेल तथा आय के बीच में छिपे रहे। यह स्थान आय के पश्चिम में था। यहां यहोशू रात में सैनिकों के साथ तंबू में ही रहे। सुबह जल्दी उठकर यहोशू सैनिकों एवं इज़राइल के नेता को साथ लेकर आय पहुंचे। तब सभी सैनिक यहोशू के साथ नगर में पहुंचे और उन्होंने आय के उत्तर में तंबू डाल दिया। उनके तथा आय नगर के बीच केवल एक घाटी ही की दूरी थी। तब यहोशू ने लगभग 5,000 सैनिकों को बेथेल एवं आय के पश्चिम में खड़े कर दिए और खास सेना को नगर के उत्तर में तथा कुछ सैनिकों को पश्चिम में खड़ा किया और यहोशू ने रात घाटी में बिताई। जब आय के राजा ने यहोशू के सैनिकों को देखा, वे जल्दी नगर के लोगों को लेकर इज़राइल से युद्ध करने निकल पड़े। युद्ध मरुभूमि के मैदान में था, लेकिन राजा को नहीं मालूम था कि नगर के पीछे इज़राइली सैनिक छिपे हैं। यहां यहोशू और उनके साथ के सैनिकों ने उनके सामने कमजोर होने का दिखावा किया। वे पीठ दिखाते हुए निर्जन प्रदेश में भागने लगे। इनका पीछा करने के लिए नगरवासियों को तैयार किया गया था। वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर होते गए। अब आय में और बेथेल में कोई भी पुरुष ना बचा। सब पुरुष इज़राइल का पीछा करने जा चुके थे। नगर को बचाने के लिए कोई नहीं था। तब यहावे ने यहोशू से कहा, जो बर्छी तुम अपने हाथ में लिए हुए हो, उसे आय की ओर उठाओ, क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तब यहोशू ने वह बर्छी जो अपने हाथ में लिए हुए थे नगर की ओर उठाई। जब घात में बैठे सैनिक अपनी अपनी जगह से बाहर आ गए और यहोशू ने वह बर्छी आगे बढ़ाई, तब ये सैनिक दौड़कर नगर में जा घुसे और उस पर हमला किया और उन्होंने नगर में आग लगा दी। दूसरी ओर जब उनका पीछा करते लोगों ने मुड़कर पीछे देखा, तो नगर से धुआं आकाश की ओर उठ रहा था। अब उनके लिए शरण लेने की कोई जगह ना आगे थी ना पीछे, क्योंकि वे लोग जो उन्हें पीठ दिखाकर निर्जन प्रदेश में भाग रहे थे, वे उनके विरुद्ध हो गए थे। जब यहोशू के साथ के इज़राइली सैनिकों ने देखा कि घात लगाए सैनिकों ने नगर पर हमला किया है और नगर से उठ रहा धुआं आकाश में पहुंच रहा है, तब उन्होंने आय के पुरुषों को मारना शुरू कर दिया। वे सैनिक जो नगर में थे उनका सामना करने आ पहुंचे। तब आय के सैनिकों को इज़राइलियों ने घेर लिया। उन्होंने सबको ऐसा मारा कि ना तो कोई बच सका और ना कोई भाग पाया। और वे ऐ के राजा को पकड़कर यहोशू के पास जीवित ले आए। जब इसराइलियों ने निर्जन प्रदेश में पीछा करते हुए ऐ के सब सैनिकों को तलवार से मार दिया, तब सारे इसराइली वापस ऐ नगर में आ गए। ऐ नगर में स्त्री पुरुषों की संख्या 12,000 थी। यहोशू ने अपने हाथ की बर्छी उस समय तक नीची नहीं की जब तक उन्होंने ऐ के सभी लोगों को मार ना दिया। इसराइलियों ने लूटे हुए सामान में से अपने लिए केवल पशु ही रखे, जैसा कि यहावे ने यहोशू से कहा था। यहोशू ने ऐ को पूरा जला दिया जो आज तक निर्जन पड़ा है। उन्होंने ऐ के राजा को शाम तक वृक्ष पर लटकाए रखा और शाम होने पर शव को वहां से उतारकर नगर के बाहर फेंक दिया तथा उसके ऊपर पत्थरों का ऊंचा ढेर लगा दिया जो आज तक वही है। वाचा का दोहराए जाना। फिर यहोशू ने मोशे द्वारा लिखी व्यवस्था में से इसराइल वंश को दिए गए निर्देश के अनुसार एबल पर्वत में से ऐसे पत्थरों को लेकर वेदी बनाई जिन पर किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। इस वेदी पर उन्होंने यहावे तुम्हारे परमेश्वर के लिए होमबलि तथा मेल बलि चढ़ाई। सब इसराइलियों के सामने यहोशू ने मोशे के द्वारा लिखी हुई व्यवस्था की नकल कराई। उस समय सब इसराइली अपने धर्म वृद्धों, अधिकारों तथा न्याय करने वालों के साथ और यहावे के वाचा का संदूक उठाने वाले दोनों ओर खड़े हुए थे। दूसरे लोग जो वहां रहते थे तथा जन्म से ही जो इसराइली थे, उनमें आधे गेरजीम पर्वत के पास तथा आधे एबल पर्वत के पास खड़े थे। और यह यहावे के सेवक मोशे को पहले से कही गई थी कि इसराइली प्रजा को आशीर्वाद दें। इसके बाद यहोशू ने सबके सामने व्यवस्था की सब बातें जैसी लिखी हुई थी, आशीष और शाप की, सबको पढ़ के सुनाई। उसमें से कोई भी बात ना छूटी जो यहोशू ने उस समय सब इसराइली, जिसमें स्त्रियां, बालक एवं उनके बीच रह रहे पराए भी थे, ना सुनी हो। यहोशू अध्याय 9। गिबियोनियों का धोखा। जब उन सब राजाओं ने जो यर्दन पार पर्वतीय क्षेत्र में तथा भूमध्य सागर के तट पर लबानोन के निकट के निवासियों हित्ती, अमोरी, कनानी, परिजी, हिवी तथा यबूसियों ने इन घटनाओं के विषय में सुना, वे यहोशू तथा इसराइलियों से युद्ध करने के लिए एक साथ हो गए। जब गिबियोन निवासियों ने वह सब सुना जो यहोशू ने यरीखो तथा ऐ के साथ किया था, उन्होंने भी चालाकी की व अपनी यात्रा राजदूतों के रूप में शुरू की। उन्होंने अपने गधों पर फटे पुराने बोरे, दाख मधु की कुप्पी बांध दी और पुरानी चप्पलें तथा फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उनकी रोटी भी सूख चुकी थी जो चूर चूर हो रही थी। वे यहोशू के पास गिलगाल में पहुंचे। उन्होंने यहोशू तथा इसराइलियों से कहा, हम दूर देश से आ रहे हैं, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। किंतु इसराइलियों ने हिव्वियों से कहा, क्या पता आप हमारे ही देश के निवासी हो, अतः हम आपसे दोस्ती क्यों करें। किंतु उन्होंने यहोशू से कहा, हम तो आपके सेवक हैं। तब यहोशू ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उत्तर दिया, हम बहुत दूर देश से आए हैं, क्योंकि हमने यहावे आपके परमेश्वर की प्रशंसा सुनी है। हमने उनके बारे में जो उन्होंने मिस्र में किया था सब सुन रखा है। हमने यह भी सुना है कि उन्होंने अमोरियों के दो राजाओं के साथ क्या किया जो यर्दन के उस पार थे, हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग जो अश्तारोथ पर थे। तब हमारे बुजुर्ग तथा देशवासियों ने कहा कि यात्रा के लिए अपने साथ जरूरी सामान ले लो और उनसे मिलने जाओ तथा उनसे कहना, हम आपके सेवक हैं, तब आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। यात्रा शुरू करते समय हम गर्म रोटी लेकर घर से निकले थे, किंतु अब देखिए ये रोटियां सूख चुकी हैं और दाख मधु की ये थैली जब हम भर रहे थे नई थी, किंतु अब देखिए ये फट गई है, हमारे वस्त्र और चप्पलें फट रही हैं। तब इसराइलियों ने यहावे से पूछे बिना ही उनकी बात मान ली। यहोशू ने उनके साथ दोस्ती कर ली और कहा कि उनकी हत्या ना की जाएगी। सभा के प्रधानों ने उनसे यह वायदा किया। जब वे उनसे दोस्ती कर चुके, फिर 3 दिन बाद उन्हें पता चला कि वे तो उनके पड़ोसी ही थे, और वे उन्हीं के देश में रह रहे थे। इज़राइल वंश के लोग तीसरे दिन गिबियोन, कफीरा, बैरोत तथा किरियत या आरीम पहुंच गए, और उस शपथ के कारण जो सभा के प्रधानों ने यहावे इज़राइल के परमेश्वर के सामने उनके साथ खाई थी, उनकी हत्या ना कर सके। सब लोग इस कारण प्रधानों पर नाराज होने लगे। लोगों के सामने प्रधान यह कहते रहे, हमने यहावे इज़राइल के परमेश्वर की शपथ ली है, अब तो हम उनको छू भी नहीं सकते। हम इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें जीवित रहने दे, अन्यथा उनसे की गई शपथ हम पर भारी पड़ेगी। प्रधानों ने लोगों से कहा, उन्हें जीवित रहने दो। तब गिबियोनियों को इज़राइली सभा के लिए लकड़हारे तथा पानी भरने वाले बनकर रहना पड़ा, जैसा उनके विषय में प्रधानों ने बताया था। तब यहोशू ने गिबियोनियों को बुलाकर उनसे पूछा, जब तुम लोग हमारे ही देश में रह रहे थे तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हम दूर देश से आए हैं? तब अब तुम लोग शापित हो गए हो, और तुम मेरे परमेश्वर के भवन के लिए हमेशा लकड़ी काटने तथा पानी भरने वाले ही रहोगे। तब उन्होंने यहोशू से कहा, इसके पीछे कारण यह है कि आपके सेवकों को यह बताया गया था कि यहावे परमेश्वर ने अपने सेवक मोशे को आदेश दिया था कि यह पूरा देश आपको दिया जाएगा और आप इन निवासियों को मार दे, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब देखिए, हम आपके ही हाथों में हैं, हमारे साथ आप वही कीजिए जो आपको सही और अच्छा लगे। तब यहोशू ने गिबियोनियों को बचाया और उनकी हत्या नहीं की, किंतु यहोशू ने उसी दिन सोच लिया था कि वे अब से इज़राइली सभा के लिए तथा यहावे द्वारा बताए जगह पर उनकी वेदी के लिए लकड़ी काटेंगे तथा उनके लिए पानी भरा करेंगे।
यहोशू अध्याय 10। काल प्रवाह का अवरोध। फिर दूसरे दिन जब यरूशलेम के राजा अदोनी तसेदेक ने यह सुना कि यहोशू ने अय नगर को अपने अधीन कर उसे पूरा नष्ट कर दिया है, ठीक जैसा उन्होंने यरीको एव उसके राजा के साथ किया था, वैसा ही उन्होंने अय और उसके राजा के साथ भी किया, तथा गिबियोन वासियों ने इज़राइल के साथ संधि कर ली और अब वे उसी देश में रह रहे हैं। अदोनी तसेदेक और साथ के लोग डर गए, क्योंकि गिबियोन एक प्रतिष्ठित नगर था और अय से अधिक बड़ा था तथा उसके लोग भी वीर थे। तब यरूशलेम के राजा अदोनी तसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा याफिया तथा एगलोन के राजा दबीर को यह संदेश भेजा कि यहां आकर मेरी मदद कीजिए ताकि हम गिबियोन पर हमला करें, क्योंकि उसने यहोशू तथा इज़राइल वंश से दोस्ती कर ली है। तब अमोरियों के पांच राजा यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लाकीश तथा एगलोन के राजा एक साथ मिल गए। उन्होंने अपनी अपनी सेनाएं लेकर गिबियोन के पास तंबू खड़े किए तथा गिबियोन से लड़ाई शुरू की। तब गिबियोन वासियों ने गिलगाल में यहोशू को यह संदेश भेजा, अपने सेवकों को अकेला मत छोड़िए, हमारी मदद के लिए तुरंत आइए और हमें बचाइए। अमोरियों के सभी राजा जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं एक होकर हमारे विरुद्ध खड़े हैं। यह सुन यहोशू उनके साथ युद्ध के लिए तैयार व्यक्ति तथा शूर योद्धा लेकर गिलगाल से निकले। यहावे ने यहोशू से कहा, उनसे मत डरना, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे अधीन कर दिया है, उनमें से एक भी तुम्हारे सामने ठहर ना सकेगा। तब गिलगाल से पूरी रात चलकर यहोशू ने उन पर अचानक हमला कर दिया। यहावे ने शत्रु को इसराइलियों के सामने कमजोर कर दिया तथा गिबियोन पर बड़ा विरोध किया और बेत होरोन के मार्ग की चढ़ाई पर उनका पीछा किया और अजेका तथा मक्केदा तक उनको मारते गए। वे इसराइलियों से बेत होरोन की ढलान तक भागते रहे। यहावे ने उन पर अजेका से बड़े बड़े पत्थर समान ओले फेंके, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और जो ओले से मरे वे कम थे, लेकिन तलवार से मारे गए लोग ज्यादा थे। जिस दिन यहावे ने अमोरियों को इसराइल वंश के अधीन कर दिया था, उस दिन यहोशू ने यहावे से बात की और इसराइलियों के सामने कहा, सूर्य गिबियोन पर और चंद्रमा अयाजालोन घाटी पर रुक जाए। तब सूर्य एवं चंद्रमा रुक गए, जब तक इज़राइली राष्ट्र की सेना ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया।
यह घटना याशार की किताब में लिखी है। सूर्य लगभग पूरा दिन आकाश के बीच रुका रहा। इससे पहले और इसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब यहावे ने किसी मनुष्य का ऐसा आग्रह स्वीकार किया हो, क्योंकि यह वह समय था जब यहावे इसराइल की ओर से युद्ध कर रहे थे। फिर यहोशू एवं उनके साथ सब इसराइली गिलगाल चले गए। मक्केदा पर विजय। जब पांचों राजा भागकर मक्केदा की गुफा में छिपे थे, यहोशू को यह बताया गया, पांचों राजा मक्केदा की गुफा में छिपे हुए हैं। यहोशू ने उनसे कहा, गुफा के मुख पर बड़ा गोल पत्थर रख दो और वहां कुछ पहरेदार बिठा दो, और तुम वहां मत रुकना। तुम अपने शत्रुओं का पीछा करना और उन पर वार करना। जो सबसे पीछे है उन्हें मौका देना कि वे अपने नगर में जा पाए, क्योंकि यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने उन्हें तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। जब यहोशू एवं इसराइल वंश उनको मार चुके और उनमें से कुछ लोग बच गए, वे नगर के गढ़ में चले गए। तब सभी इसराइली मक्केदा के पड़ाव में यहोशू के पास सुरक्षित लौट आए। इसके बाद फिर किसी में भी यह साहस ना रहा कि इसराइल के विरुद्ध कुछ कहे। तब यहोशू ने कहा, गुफा का पत्थर हटा दो और पांचों राजाओं को मेरे पास लाओ। वे गुफा में से उन पांच राजाओं को निकाल लाए। वे यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लाकीश तथा एग्लोन के राजा थे। जब इन्हें यहोशू के पास लाया गया, तब यहोशू ने सब इसराइलियों को बुलाया तथा योद्धाओं के प्रमुखों को जो उनके साथ युद्ध पर गए थे उनसे कहा, इन राजाओं की गर्दनों पर पैर रखो। और वे उनके पास गए और उनकी गर्दन पर अपने पैर रखे। तब यहोशू ने सब इसराइली प्रजा को बोला, ना तो डरना और ना निराश होना, बहादुर तथा साहसी बनना, क्योंकि यहावे शत्रुओं की यही दिशा करेंगे जिन जिन से तुम युद्ध करोगे। फिर यहोशू ने उनको मार दिया तथा उनके शवों को पांचों वृक्ष पर लटका दिया। शाम तक उनके शव पेड़ों पर लटके रहे। सूर्य ढलने पर यहोशू के आदेश पर उन्होंने वे शव उतारकर उसी गुफा में रख दिए जहां वे छिपे थे। उन्होंने गुफा पर बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा दिया, जो आज तक वैसा ही है। दक्षिण फिलिस्तीन पर विजय। मक्केदा नगर को यहोशू ने उसी दिन अपने अधीन कर लिया और नगरवासियों तथा राजा को तलवार से मार दिया, और कोई भी जीवित ना रहा। यहोशू ने मक्केदा के राजा के साथ ठीक वही किया जैसा उन्होंने यरीखो के राजा के साथ किया था। तब यहोशू तथा उनके साथ सब इसराइली मक्केदा से होते हुए लिबना पहुंचे, और उन्होंने लिबना से युद्ध किया। यहावे ने लिबना नगर तथा उसके राजा को इसराइल के अधीन कर दिया। यहोशू ने नगर के हर व्यक्ति को तलवार से मार दिया, किसी को भी जीवित ना छोड़ा। राजा के साथ भी यहोशू ने वही किया जो उन्होंने यरीखो के राजा के साथ किया था। तब यहोशू और उनके साथ सब इसराइली लिबना से होते हुए लाकीश पहुंचे। उन्होंने वहां उनसे लड़ाई की। यहावे ने लाकीश को इसराइल के अधीन कर दिया। दूसरे दिन यहोशू ने हर एक व्यक्ति को तलवार से मार दिया। लाकीश की मदद के लिए गेजेर का राजा होराम आया। यहोशू ने उसे और उसकी सेना को भी मार दिया। यहोशू ने किसी को भी जीवित ना छोड़ा। यहोशू और उनके साथ सभी इसराइली लाकीश से होकर एग्लोन पहुंचे। उन्होंने उसके पास तंबू डाले और उनसे लड़ाई की। उन्होंने उसी दिन उस पर अधिकार कर लिया तथा सभी को तलवार से मार दिया। फिर यहोशू और उनके साथ सभी इसराइली एग्लोन से हेब्रोन पहुंचे। उन्होंने उनसे युद्ध किया और उन पर अधिकार कर उन्हें नष्ट कर दिया तथा उसके राजा और सभी लोगों को तलवार से मार दिया और किसी को भी जीवित ना छोड़ा। यहोशू ने नगर को तथा हर एक नगरवासी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसके बाद यहोशू तथा उनके साथ सब इसराइली दबीर को गए और उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। यहोशू ने उसके राजा तथा नगर को अपने अधीन करके तलवार से मार दिया, और कोई भी जीवित ना रहा, ठीक जैसा उन्होंने हेब्रोन में किया था। दबीर तथा उसके राजा के साथ भी वही किया जैसा उन्होंने लिबना तथा उसके राजा के साथ भी किया था। इस प्रकार यहोशू ने पर्वतीय क्षेत्र नेगेव तथा उनके राजा को भी नष्ट कर दिया और किसी को भी जीवित ना छोड़ा, ठीक जैसा यहावे इसराइल के परमेश्वर का आदेश था। यहोशू ने कादेश बढ़ने से लेकर गाजा तक तथा गोशेन से लेकर गिबियोन तक पूरे देश को अपने अधीन कर लिया। यहोशू ने एक ही बार में इन सभी राजाओं तथा उनकी सीमाओं को अपने अधिकार में ले लिया, क्योंकि यहावे इसराइल के परमेश्वर उनके लिए युद्ध कर रहे थे। इसके बाद यहोशू तथा उनकी सेना गिलगाल में अपने पड़ाव में लौट आए।
यहोशू अध्याय 11। उत्तरी फिलिस्तीन का अधिग्रहण।
जब हाजोर के राजा याबीन को यह बात मालूम पड़ी, उसने मादोन के राजा योबाब को, शिमरोन तथा अक्षाफ नगर के राजाओं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के राजाओं, किन्नेरेत के दक्षिण अराबा में यर्दन नदी की घाटी के राजाओं, तराई के राजाओं तथा पश्चिमी समुद्र तट के राजाओं के पास अपने दूत भेजे। उसने यर्दन के दोनों तटों पर बसे कनानी, इत्ती, अमोरी, परिज्जी तथा पर्वतीय यबूसी लोगों को मिस्पा के हरमोन पर्वत की तराई के निवासी हिव्वी लोगों के लिए भी दूत भेजे। ये भी एक साथ अपनी अपनी सेनाएं लेकर निकले। वे बहुत लोग थे, इनमें ज्यादा घोड़े तथा रथ थे। इन सभी राजा ने एक साथ मिलकर मेरोम की नदी के किनारे पर अपने पड़ाव डाल दिए, ताकि वे इसराइल पर आक्रमण कर सकें। यहावे ने यहोशू से कहा, इन लोगों से मत डरना, क्योंकि कल इसी समय मैं इसराइल के सामने इन सभी को मार दूंगा। तुम उनके घोड़ों के घुटने की नस काटकर उन्हें लंगड़ा बनाना तथा उनके रथों को जला देना। तब यहोशू तथा उनके साथ सब योद्धाओं ने मेरोम नदी के निकट उन पर अचानक हमला कर दिया, और यहावे ने उन्हें इसराइल के अधीन कर दिया। इसराइली बृहत सिदोन से मिस्रेफोत मईम तक तथा पूर्व में मिस्पा घाटी तक उनका पीछा करते चले गए। उन्होंने उनको ऐसा मारा कि उनमें से एक भी योद्धा जीवित ना रहा। यहावे ने यहोशू को जैसा बताया उसके अनुसार ही यहोशू ने किया। घोड़े लंगड़े कर दिए तथा रथ जला दिए गए। फिर यहोशू ने उसी समय हाजोर नगर पर हमला किया तथा उसके राजा को तलवार से मार दिया, क्योंकि वह इन सभी राज्यों का राजा था। उन्होंने इस नगर के हर व्यक्ति को तलवार से मार दिया और सब कुछ पूरा नष्ट कर दिया। उनमें एक भी व्यक्ति जीवित ना रहा। फिर उन्होंने हाजोर को जला दिया। यहोशू ने इन सभी नगरों और राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया और तलवार से उनको मार दिया, जैसा यहावे के सेवक मोशे का आदेश था। परंतु इसराइलियों ने उस नगर को नहीं जलाया जो टीलों पर बसा था, केवल हाजोर को यहोशू ने जलाया। इन सभी नगरों से लूटा हुआ सामान एवं पशु इसराइल वंश ने अपने लिए रख लिए। उन्होंने हर एक मनुष्य को तलवार से मार दिया, और इस तरह उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने किसी को भी जीवित ना छोड़ा, जैसा यहावे ने अपने सेवक मोशे को तथा मोशे ने यहोशू को कहा था। यहोशू ने यहावे द्वारा मोशे को दी गई किसी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ा। इस प्रकार यहोशू ने उस समस्त भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। नेगेव का संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र, समस्त गोशेन क्षेत्र, अराबा, तराइयां, इसराइल का पर्वतीय क्षेत्र तथा तराई, सेईर की दिशा में उन्नत पर्वत हालाक, हरमोन पर्वत की तराई से लबानोन घाटी में बाल गाद तक, यहोशू ने इन सभी राजाओं को मार दिया। इन राजाओं के साथ यहोशू का युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। गिबियोन निवासी हिव्वियों के अलावा कोई भी ऐसा नगर ना था जिसने इसराइल वंश के साथ संधि की हो। यह यहावे की इच्छा थी। उन्होंने इनके मन को ऐसा कठोर कर दिया कि वे इसराइल से युद्ध करते रहे, ताकि उनको मिटा डाले। यहावे यही चाहते थे कि इसराइल उन पर दया किए बिना उन्हें नष्ट करता जाए, जैसा कि मोशे का आदेश था। इसके बाद यहोशू ने पर्वतीय क्षेत्र से हेब्रोन, दबीर, अनाप तथा यहूदिया के समस्त पर्वतीय क्षेत्र से अनाकियों को मार दिया। यहोशू ने उन्हें उनके नगरों सहित पूरा नाश कर दिया। अज्जा, गात तथा अशदोद के अलावा इसराइल देश में कहीं भी अनाकी शेष ना बचे। इस प्रकार यहोशू ने पूरे देश पर अपना अधिकार कर लिया, जैसा कि यहावे ने मोशे से कहा। यहोशू ने इसराइल को उनके गोत्रों के अनुसार बांट दिया, फिर देश में लड़ाई रुक गई।
यहोशू अध्याय 12। इसराइल द्वारा पराजित राजा। ये है जो राजा यर्दन के पूर्व अराबा में थे,
जिनको इसराइलियों ने मारकर उनकी भूमि ली, इन राज्यों की सीमा अर्नोन घाटी से लेकर अर्मोन पर्वत तक तथा पूरे यर्दन घाटी तक थी। सीहोन अमोरियों का राजा था, उसका शासन अर्नोन घाटी से लेकर अमोनियों के देश के यब्बोक नदी तक फैला था। इसमें घाटी के बीच से गिलाद का आधा भाग शामिल था। उसका शासन पूर्व अराबा प्रदेश, जो किन्नेरेत झील से अराबा सागर तक और पूर्व में बेश यतीमोत तक तथा दक्षिण में पिसगा की ढलानों की तराई तक फैला था। ओग बाशान का राजा, जो रेफाइम में बचे हुए लोगों में से एक था, वह अश्तारोत तथा एद्रेई से शासन करता था। उसके शासन का क्षेत्र हरमोन पर्वत, सलेका, गेशूरियों तथा माखा हथियों की सीमा तक पूरा बाशान तथा गिलाद का आधा क्षेत्र था, जो हेशबोन के राजा सीहोन की सीमा तक फैला था। मोशे यहावे के सेवक तथा इसराइल वंश ने उन्हें हरा दिया तथा यहावे के सेवक मोशे ने ये क्षेत्र रियूबेन, गाद तथा मनशशे के आधे गोत्र को निज भाग में दे दिया। यर्दन के पश्चिमी में जो जमीन है वो लबानोन घाटी में बाल गाद से लेकर सेर में हालाक पर्वत तक के देश है, जिनके राजाओं को यहोशू एव इसराइलियों ने मार दिया था और यहोशू ने उस भाग को इसराइली गोत्रों में बांट दिया। इस भाग में पर्वतीय क्षेत्र, तराइयां, अराबा, ढलाने, निर्जन प्रदेश तथा नेगेव और इस क्षेत्र के मूल निवासी हित्ती, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी तथा यबूसी मारे गए राजा ये थे। यरीखो का राजा एक, बेथेल का निकटवर्ती अय का राजा एक, यरूशलेम का राजा एक, एब्रोन का राजा एक, यरमूत का राजा एक, लाकीश का राजा एक, एकलोन का राजा एक, गेजेर का राजा एक, दबीर का राजा एक, गेदेर का राजा एक, ओरमा का राजा एक, अराद का राजा एक, लिबना का राजा एक, अदुल्लाम का राजा एक, मकेदा का राजा एक, बेथेल का राजा एक, तपुआ का राजा एक, एफेर का राजा एक, अफेक का राजा एक, शारोन का राजा एक, मादोन का राजा एक, आजोर का राजा एक, शिमरोन मरोन का राजा एक, अक्षाफ का राजा एक, तानक का राजा एक, मगिद्धो का राजा एक, केदेश का राजा एक, कर्मेल के योकनाम का राजा एक, नाफाद दोर में दोर का राजा एक, गिलगाल में गोइम का राजा एक तथा तिरजा के राजा एक। ये पूरे 31 राजा थे। यहोशू अध्याय 13। कुलों में कनान का विभाजन। जब यहोशू बहुत बूढ़े हो चुके थे तब यहावे ने उनसे यह कहा, तुम बूढ़े हो चुके हो और भूमि का एक बड़ा अंश अब भी तुम्हारे अधिकार में नहीं आया है। वह देश जो रह गए हैं, फिलिस्तीनियों की समस्त भूमि तथा गेशूरियों का देश, मिस्र के पूर्व में स्थित शिहोर से लेकर उत्तर में एक्रोन की सीमा तक, जो कनान देश माना जाता था, हालांकि यह प्रदेश फिलिस्तीनियों के 5 शासकों के कब्जे में था। उनके नगर थे गाजा, अशदोद, अश्कलोन, गात, एक्रोन तथा दक्षिण में अव्वी। कनानियों का पूरा देश तथा मोआरा, जो सिदोनियों का राज्य था, यह अमोरियों के अफेक की सीमा तक फैला था। गिबलियों का देश लबानोन, बाल गाद से नीचे की ओर हरमोन पर्वत से लेकर लबो हामात तक। मैं इसराइलियों के सामने से लबानोन के पर्वतीय क्षेत्र के पूरे निवासियों को, जो मिस्रे फोत माइम तक बसे हैं, सीदोनियों को सबको भगा दूंगा और मेरे कहे अनुसार यह देश इसराइलियों को मीरास में दिया जाएगा। और यह देश 9 गोत्रों तथा मनशशे के आधे गोत्र को दे मीरास में दिया जाएगा। यर्दन के पूर्व की सीमाएं। मनशशे के आधा गोत्र के साथ रियूबेन तथा गाद के गोत्रों ने यर्दन के पूर्व में मोशे द्वारा अपना हिस्सा ले लिया, ठीक जैसा यहावे के सेवक मोशे ने उन्हें दिया था। अर्नोन घाटी की सीमा तक अरोअर से तथा उस नगर से जो घाटी के बीच में है तथा मेदेबा से लेकर दीबोन तथा पूरे पठार तक, अमोरियों का राजा जो हेशबोन में शासन करता था, अमोन की सीमा तक उसके सब नगर, गिलाद, गेशूरियों तथा माका हथियों का पूरा देश, पूरा हरमोन पर्वत तथा सलेका तक पूरा बाशान, बाशान में ओग का जो अश्तारोत तथा एद्रेई में राज करता था, और रेफाई में केवल वही बच गया था क्योंकि मोशे ने उनको मारकर उनकी प्रजा को देश से निकाल दिया था। लेकिन इज़राइल वंश ने गेशूरियों अथवा माकाहतियों को देश से बाहर नहीं निकाला था, आज तक वे इसराइलियों के बीच ही रह रहे हैं। मोशे ने केवल लेवी के गोत्र को कोई हिस्सा नहीं दिया। इसराइल के परमेश्वर यहावे के आदेश के अनुसार उनके लिए चढ़ाए जाने वाली अन्न बलि ही उनका हिस्सा है। मोशे ने रूबेन गोत्र को उनके कुलों के अनुसार हिस्सा दिया, अर्थात आर्नोन की घाटी की सीमा से लगे हुए अरोवर, जिसमें वह नगर भी है, और जो घाटी के बीच में है उसमें मेदेबा का पूरा मैदान शामिल है। एशबोन तथा मैदानी क्षेत्र के नगर ये है: दीबोन, बामोथ बाल तथा बेत बाल मेओन, यहत्स, केदेमोथ तथा मेफात, किरियथाइम, सिबमा, जेरेत शहर जो घाटी की पहाड़ी पर है, बेत पियोर, पिसगा की ढलान, बेत यशिमोथ, मैदान में स्थित सभी नगर, एशबोन में अमोरियों का राजा सीहोन जिसको मोशे ने मारा था, उसके सब नगर मोशे ने मिद्यानी प्रधावी एवी, रेकेम, जूर, ऊर तथा रेबा को भी पराजित किए थे। इसराइलियों ने बेओर के पुत्र बिलाम को भी, जो भविष्य बताया करता था, सबके साथ तलवार से मार दिया। रूबेन वंशजों के लिए यर्दन नदी सीमा थी। रूबेन के पुत्रों तथा उनके परिवारों के अनुसार यही नगर तथा गांव उनका हिस्सा था। मोशे ने गाद के गोत्र को उनके परिवारों के अनुसार हिस्सा दिया तथा उनकी सीमा में याजर तथा गिलाद के सभी नगर तथा अरोवर तक अमोनियों का आधा देश जो रब्बा के पूर्व में है, तथा एशबोन से रामत मिज़पा, बटोनीम और महानाइम से दबीर की सीमा तक, तथा बेत हाराम की घाटी में बेत निमरा, सुक्कोथ तथा जेफोन, एशबोन के राजा सीहोन का बचा हुआ राज्य जिसकी सीमा यर्दन नदी थी, तथा पूर्व में यर्दन के किनेरेत सागर के सीमा तक, गाद के पुत्रों को उनके गोत्रों के अनुसार दिया गया हिस्सा नगर एव गांव यही थे। मोशे ने मनशशे के आधे गोत्र को यह भाग उनके परिवारों के अनुसार दिया। उनकी सीमा महानाइम से लेकर बाशान के राजा ओग का पूरा राज्य, याइर का पूरा नगर जो बाशान में 60 नगर, गिलाद का आधा भाग, अश्तारोथ तथा एद्राई, बाशान में ओग राजा के नगर थे। ये सभी मनशशे के पुत्र माखीर वंश को उनके परिवारों के अनुसार बांट दिया गया। ये यरीखो के पूर्व में यर्दन के पार मोआब के मैदानों में मोशे द्वारा बांटी गई थी। लेवी के गोत्र को मोशे ने कोई हिस्सा नहीं दिया। मोशे ने उन्हें बताया कि यहावे इसराइल के परमेश्वर ही उनका हिस्सा है, जैसा यहावे ने उनसे कहा था।
यहोशू अध्याय 14। यर्दन के पश्चिम की मीरास। पुरोहित एलियाजर तथा नून के पुत्र यहोशू तथा इसराइल के परिवार के मुखियों द्वारा कनान देश में इसराइलियों को दिया गया हिस्सा इस प्रकार है। उनके भाग के लिए चिट्ठी डालकर नाम चुनकर मीरास का निर्णय लिया गया। 9.5 गोत्रों के संबंध में यहावे ने मोशे को यही आदेश दिया था। मोशे तो 2.5 गोत्रों को यर्दन के पार हिस्सा दे चुके थे। उनके साथ मोशे ने लेवी गोत्र को कोई भी हिस्सा नहीं दिया, क्योंकि योसेफ के 2 गोत्र थे, मनशशे तथा एफ्राइम। इस देश में लेवी के वंश को कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया था। उन्हें केवल रहने के लिए ही जगह दी गई थी। उनके चराइयां एव उनके पशु ही उनकी संपत्ति थी। इस विषय में इसराइल वंश ने ठीक वही किया जैसा यहावे द्वारा मोशे को आदेश दिया गया था। कालेब की सीमा। जब गिलगाल में यहूदा गोत्र के लोग यहोशू के पास आए, और कनिजी येफुने के पुत्र कालेब ने यहोशू से आग्रह किया, कादेश बरने में परमेश्वर के दास मोशे से आपके तथा मेरे संबंध में की गई यहावे की प्रतिज्ञा आपको मालूम है। जब यहावे के सेवक मोशे ने मुझे कादेश बरने से इस देश की जानकारी लेने भेजा था, तब मेरी आयु 40 वर्ष की थी, और मैं उनके लिए सही सूचना लाया। फिर भी उन लोगों ने जो मेरे साथ वहां आए थे उनको डरा दिया,
किंतु मैंने यहावे अपने परमेश्वर की बात को पूरा किया। तब उस दिन मोशे ने यह कहते हुए शपथ ली, निश्चय जिस भूमि पर तुम्हारे पांव पड़े हैं हमेशा के लिए तुम्हारे तथा तुम्हारे बच्चों के लिए हो जाएंगे, क्योंकि तुमने पूरे मन से यहावे मेरे परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम किया है। जब इसराइली मरुभूमि में भटक रहे थे, तब यहावे ने मोशे को इस बारे में बताया था कि अपने वायदे के अनुसार यहावे ने मुझे 45 वर्ष जीवित रखा है। आज मेरी उम्र 85 वर्ष की हो चुकी है। मुझमें आज भी वैसा ही बल है जैसा उस समय था जब मोशे ने मुझे वहां भेजा था। युद्ध के लिए मुझमें जैसा बल उस समय था, आज भी उतनी ही ताकत है। तब मुझे यहावे के उस दिन दिए गए वचन के अनुसार यह देश दे दीजिए, क्योंकि आपको मालूम था कि वहां अनाकियों के लोग रहते थे। यह बहुत बड़ा भी है। यदि यहावे मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार उन अनाकियों को निकाल भगाऊंगा। यहोशू ने यफुन्ने के पुत्र कालेब के लिए आशीष की बातें कही और उसे हिस्से में हेब्रोन दे दिया। इस प्रकार आज तक हेब्रोन यफुन्ने कालेब का भाग है, क्योंकि उसने पूरे मन से यहावे इसराइल के परमेश्वर को माना था। हेब्रोन इससे पहले किरियत अरबा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अनाकियों में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का नाम अरबा था। इसके बाद सारे देश में लड़ाई की स्थिति थम गई।
यहोशू अध्याय 15। यहूदिया की सीमा। यहूदा गोत्र को उनके परिवारों के अनुसार बंटवारे में एदोम की सीमा मिली, जो जीन के वन के निर्जन प्रदेश में दक्षिण दिशा की ओर है। उनकी दक्षिण सीमा लवन सागर के दक्षिण छोर से उस खाड़ी से जो दक्षिण की ओर मुड़ती है, और यह अक्रब्बीम चढ़ाई की ओर होती हुई जीन की ओर बढ़ जाती है, फिर कादेश बरने के दक्षिण से बढ़ते हुए हेजरोन पहुंचती है और अद्धार की ओर से कारका की ओर बढ़ जाती है। यह आजमोन की ओर से मिस्र की सरीता की ओर बढ़ती है तथा समुद्र में जाकर मिल जाती है। यह दक्षिण सीमा में थी। यर्दन के मुहाने तक लवन सागर पूर्वी सीमा थी और उत्तरी सीमा समुद्र की खाड़ी से थी जो यर्दन के मुहाने पर है। फिर सीमा उत्तर दिशा से बढ़कर बेत होगला तक और उत्तर में बेत अराबा से आगे बढ़ते हुए रियूबेन के पुत्र बोहन की शिला तक पहुंची। सीमा फिर आकोर की घाटी से दबीर तक बढ़ी और उत्तर में गिलगाल की ओर मुड़ गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के पास घाटी के दक्षिण में है। यह सीमा आगे बढ़ते हुए एन शेमेश के सीमा तक पहुंचकर एन रोगेल पर खत्म हो गई। इसके बाद यह सीमा बेन हिन्नोम की घाटी के यबूसी ढाल तक पहुंची, जो दक्षिण दिशा में है अर्थात यरूशलेम में है, और यह सीमा पश्चिम में हिन्नोम की घाटी के पास पर्वत के शिखर तक पहुंची, जो हिन्नोम की घाटी के पश्चिम में है, जो उत्तर की ओर रेफाइम की घाटी के अंतिम छोर पर है। पर्वत शिखर से सीमा आगे बढ़कर नेफतोआ के झरने की ओर मुड़कर एफ्रोन पर्वत के नगरों की ओर बढ़ जाती है। तत्पश्चात सीमा बाला अर्थात किरियत या आरीम की ओर मुड़ जाती है। फिर सीमा बाला से पश्चिम दिशा में सेर पर्वत की ओर मुड़ जाती है और आगे बढ़ते हुए उत्तर में यारीम पर्वत के अर्थात कसालोन के ढाल पर पहुंचती है और आगे बेत शेमेश में जो तिम्ना पहुंचती है। तब सीमा एक्रोन के उत्तर की ओर बढ़कर शिक्केरोन की ओर जाती है और बाला पर्वत की ओर से यबनेल समुद्र पर जाकर समाप्त हुई। पश्चिम सीमा भूमध्य सागर थी, जो यहूदा गोत्रजों के लिए उनके परिवारों के अनुसार दिया गया उसकी यही सीमा थी। यहोशू ने यफुन्ने के पुत्र कालेब को यहूदा गोत्र के बीच एक भाग दिया। यहावे की ओर से यहोशू को यही आदेश मिला था कि कालेब को किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन दिया जाए। अरबा अनाक के पूर्व पिता का नाम था। कालेब ने अनाक के तीन पुत्रों शेशाई, अहिमान तथा तालमाई को वहां से निकाल दिया। फिर कालेब ने दबीर वासियों पर हमला किया। दबीर का पुराना नाम किरियत सेफेर था। कालेब ने घोषणा की, जो कोई किरियत सेफेर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेगा, मैं उसका विवाह अपनी पुत्री अक्सा से कर दूंगा। कालेब के भाई केनस के पुत्र ओथनियल ने किरियत सेफेर को अधीन कर लिया। तब कालेब ने उसे अपनी पुत्री
अक्सा उसकी पत्नी होने के लिए दे दी। विवाह होने के बाद जब अक्सा अपने पति से बात कर रही थी, उसने उसे अपने पिता से एक खेत मांगने के लिए कहा। जब वह अपने गधे पर से उतर गई, तब कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उत्तर दिया, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जैसे आप मुझे नेगेव क्षेत्र दे ही चुके हैं, और यदि हो सके तो मुझे जल के सोते भी दे दीजिए। तब कालेब ने उसे ऊपर का सोता, नीचे का सोता दोनों दे दिया। यहूदा गोत्र के कुलों का उनके परिवारों के अनुसार जो बंटवारा किया वे ये हैं। दक्षिण में एदोम की सीमा से लगे प्रदेश में यहूदा गोत्र के कुलों को दिए गए नगर थे, कब्जियेल, एदर तथा यागूर, किना, दीमोना, अदआधा, केदेश, आजोर, यथनान, जीफ, तेलेम, बालोत, आजोर हदता, केरियोत हेजरोन अर्थात हाजेर, अमाम, शेमा, मोलाधा, हाजर गद्दा, एशमोन, बेत पेलेट, हाजर शुअल, बेशरबा, बिजियोथिया, बाला, इयिम, एजेम, एलतोलद, कसील, ओरमा, जिकलाग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, शिलहीम, एन तथा रिमोन, उनके गांवों सहित कुल 29 नगर। पश्चिम तलहटी में एस्ताउल, जोरा, अशना, जानोहा, एन गनीम, तपुआ, एनाम, यरमूत, अदुलाम, सोखो, अजेका, शरीम, अदियथीम, गदेरा तथा गदेरोथाइम और उनके गांवों के साथ 14 नगर, सेनान, अदाशा, मिगदलगाद, दिलान, मिजपा, योकथेल, लाकीश, बोध सखत, एग्लोन, कब्बोन, लहमास, इथलीश, गदेरोत, बेथ दागोन, नामा तथा मक्केदा गांवों सहित 16 नगर, लिबना, एतेर, आशान, यिफ्ता, अशना, नजीब, काइला, अकजीब तथा मारेशा और गांवों सहित 9 नगर, एक्रोन इसके गांवों तथा नगरों सहित, एक्रोन से लेकर समुद्र तट अपने अपने गांवों के साथ, जितने नगर अशदोद की ओर है, अशदोद तथा उसके समस्त गांवों का क्षेत्र, मिस्र की सरीता, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र से लेकर गांव सहित अशदोद के नगर, गांव सहित अज्जा एवं उसके नगर, पर्वतीय क्षेत्र में शामीर, यतीर, सोखो, दन्हा, किरियत सन्ना अर्थात दबीर, अनाब, इशथमो, अनीम, गोशेन, होलोन तथा गीलो गांवों सहित 11 नगर, अरब, दूमा, एशान, यानूम, बेत तपुआ, अफेका, हुमटा, किरियत अरबा अर्थात एब्रोन तथा जियोर गांवों सहित 9 नगर, माउन, कार्मेल, जीफ, यूथा, येजरील, योगदाम, जोन्हा, कैन, गिबिया तथा तिम्ना, इनके गांवों सहित 10 नगर, अलहूल, बेथ तुसूर, केदोर, मारात, बेथ अनोत, एलतेकोन, इनके गांव सहित 6 नगर, किरियत बाल अर्थात किरियत यारीम तथा रब्बा, इनके गांव सहित 2 नगर, निर्जन प्रदेश में बेत आराबा, मिद्धीन, सकाखा, निबशान, लवन का नगर तथा एनगेदी, इनके गांव सहित 6 नगर, जो यहूदा गोत्रज यरूशलेम के ही रहने वाले यबूसियों को निकाल ना सके, इस कारण यबूसी अब तक यहूदा गोत्रजों के साथ हैं।
यहोशु अध्याय 16।
एफ्राइम और मनशशे की सीमा। योसेफ को यरीखो नगर के पास यर्दन नदी से लेकर यरीखो के जल के सोते तक और पूर्व में निर्जन प्रदेश तक भूमि दी गई, जो यरीखो से लेकर पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए बेथेल तक थी। यह सीमा बेथेल से लूज तक थी और आगे बढ़ते हुए अटारोत के अकरियों की सीमा तक थी। यह पश्चिम से होते हुए यफलेतियों की सीमा से आगे बढ़ते हुए बेत होरोन तथा गेजेर से होती हुई भूमध्य सागर तट पर खत्म होती है। इस प्रकार योसेफ के पुत्र मनशशे तथा एफ्राइम को उनका हिस्सा मिला। उनके परिवारों के अनुसार एफ्राइम वंश के मीरास की सीमाएं इस प्रकार थीं। पूर्व में उनकी सीमा अटरोत अद्दर से लेकर उच्चतर बेत होरोन तक थी। यह सीमा पश्चिम की ओर बढ़ती गई, जो उत्तर में मिकमथात, फिर पूर्व में तानात शीलो की ओर मुड़ गई, फिर बढ़ते हुए यानोहा में जा पहुंची। यानोहा से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अटारोत और नारा पहुंचकर येरिको पहुंच गई और वहां से निकलकर यर्दन पर खत्म हुई। फिर तपुआ से यह सीमा पश्चिम में काना नदी की ओर बढ़ जाती है और भूमध्य सागर पर जाकर मिल जाती है। एफ्राइम गोत्र के परिवारों के अनुसार उनका हिस्सा यही है। इसके अलावा कुछ ऐसे गांव एव नगर भी हैं जो मनश्शे की विरासत की सीमा के अंदर थे, जो एफ्राइम वंश को दे दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उन कनानियों को बाहर नहीं निकाला जो गेजेर में रह रहे थे। तब आज तक कनानी एफ्राइम वंश के बीच दास बनकर रह रहे हैं।
यहोशू अध्याय 17।
फिर मनश्शे के गोत्र के लिए भूमि का बंटवारा किया गया। मनश्शे के बड़े बेटे माखीर को गिलाद तथा बाशान नामक स्थान दिया गया, क्योंकि वह एक योद्धा था। तब मनश्शे के शेष पुत्रों के लिए उनके परिवारों के अनुसार भूमि बांटी गई। अबीएजेर, एलेक, असरियल, शेकेम, एफेर तथा शेमीदा के पुत्रों के लिए, ये सभी उनके परिवारों के अनुसार योसेफ के पुत्र मनश्शे के पुरुष वंशज थे। एफेर जो गिलाद का बेटा माखीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र जलोफेहाद का कोई पुत्र ना था, केवल बेटियां ही थीं। उसकी पुत्रियों के नाम महला, नोआ, ओगला, मिल्खा तथा तिर्जा है। ये सभी पुरोहित एलियाजर, नून के पुत्र यहोशू तथा प्रधानों के पास गई तथा उनसे निवेदन किया। यहावे की ओर से मोशे को यह कहा गया था कि वह हमें हमारे भाई बंधुओं के साथ हमारा हिस्सा दे। तब उन्होंने यहावे के कहे अनुसार उन्हें उनके पिता के भाइयों के बीच हिस्सा दे दिया। इसके अलावा गिलाद तथा बाशान मनश्शे के हिस्से में 10 अंश आए। यह यर्दन के पार है तथा मनश्शे गोत्र के पुत्रों के साथ पुत्रियों को भी हिस्सा दिया। गिलाद पर अब मनश्शे के पुत्रों का अधिकार हो गया। मनश्शे प्रदेश की सीमा आशेर से शेकेम के पूर्व में मिकमथात तक थी। फिर यह सीमा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां एन तपुआ का नगर है। तपुआ देश मनश्शे की संपत्ति थी, किंतु मनश्शे की सीमा पर बसा नगर तपुआ एफ्राइम वंश की संपत्ति थी। तब सीमा दक्षिण में काना नदी की ओर बढ़ जाती है। ये नगर मनश्शे के नगरों के बीच होने पर भी एफ्राइम ही की संपत्ति थी। मनश्शे की सीमा नदी के उत्तर में थी, जो भूमध्य सागर पर जाकर खत्म होती थी। दक्षिण हिस्सा एफ्राइम का तथा उत्तरी हिस्सा मनश्शे का था। इनकी सीमा समुद्र तक थी। ये उत्तर में आशेर तथा पूर्व में इसाखार तक पहुंचती थी। इसाखार तथा आशेर के भूमि प्रदेश के अंदर में ही मनश्शे को ये दिए गए। इबलीम तथा इसके चारों ओर के गांव, दोर तथा इसके चारों ओर के गांव, एन दोर तथा इसके चारों ओर के गांव, तानक तथा इसके चारों ओर के गांव, मगीदो तथा इसके चारों ओर के गांव, और तीसरा नगर नाफोत था। मनश्शे इन नगरों को अपने अधिकार में ना कर सके, क्योंकि कनानी जबरदस्ती इन नगरों में रह रहे थे। जब इज़राइल वंश बलवंत हो गए, तब उन्होंने कनानियों को मजदूर बना दिया। उन्होंने इन्हें देश से पूरी तरह बाहर ना निकाला। योसेफ गोत्रजों ने यहोशू से कहा, आपने क्यों एक ही बार में हमें हिस्सा दे दिया, जबकि हम वह गोत्र हैं जिसे यहावे ने अब तक आशीष दी है, और हमारे गोत्र की संख्या बहुत ज्यादा है। यहोशू ने उन्हें उत्तर दिया, यदि तुम्हारे गोत्र की संख्या ज्यादा है तो अच्छा होगा कि तुम लोग पर्वतीय वन में जाकर वन को साफ करें और परिजियों तथा रेफाइम के प्रदेश में अपने लिए जगह बना लें, क्योंकि तुम्हारे लिए एफ्राइम का पर्वतीय क्षेत्र बहुत छोटा है। योसेफ गोत्रजों ने उन्हें उत्तर दिया, पर्वतीय क्षेत्र भी हमारे लिए पूरा ना होगा तथा उन सभी के पास लोहे के रथ हैं, जो कनानी तराई घाटी की भूमि में रहते हैं, जो बेत शान और चारों ओर के गांव में तथा जो येजरील घाटी में है। यहोशू ने योसेफ, एफ्राइम तथा मनश्शे गोत्रों से कहा, तुम लोग बहुत बलवान हो, तुम लोगों का फैसला एक ही बार में ना होगा। यह पर्वतीय क्षेत्र है, तुम इसे साफ करो और यह पूरा तुम्हारा ही होगा, और तुम कनानियों को निकाल बाहर करोगे, यद्यपि उनके पास लोहे के रथ है और वे ताकतवर भी हैं।
यहोशू अध्याय 18।
शेष भूभाग का विभाजन। फिर सब इज़राइली एक साथ शीलो में इकट्ठे हुए। उन्होंने वहां मिलन वाले तंबू को खड़ा किया। पूरा देश उनके वश में हो चुका था, फिर भी इज़राइल के 7 गोत्र अब भी ऐसे थे जिन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला था। तब यहोशू ने इज़राइल वंश से कहा, यहावे तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने जो भूमि तुम्हें दे दी है उसे अधिकार में करने के लिए कब तक टालते रहोगे? हर गोत्र से 3-3 व्यक्तियों को इस कार्य की जवाबदारी दे, ताकि वे जाकर इस देश को देखें और अपनी इच्छा से अपने गोत्र के लिए विरासत चुन ले और आकर मुझे बताए। यहूदा गोत्र अपनी ही सीमा के दक्षिण में तथा योसेफ का गोत्र उत्तर में रहेगा। तुम देश को 7 भागों में बांटकर पूरी जानकारी मुझे देना। मैं यहावे हमारे परमेश्वर से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। तुम्हारे बीच लेवियों को कोई भाग नहीं दिया गया है, क्योंकि यहावे की ओर से मिला हुआ पुरोहित पद ही उनका भाग है। रियूबेन, गाद तथा मनशशे के आधे गोत्र को पूर्व में यर्दन के दूसरी ओर हिस्सा मिल चुका है, जो यहावे के सेवक मोशे द्वारा उन्हें दिया गया था। तब जिनको देश का हाल लिखने के लिए चुना गया था, वे उस देश में जाकर उसका नक्शा तैयार करने जब निकले, उनके लिए यहोशू का आदेश इस प्रकार था, तुम उस देश को अच्छी तरह देखे और आकर मुझे बताए, तब मैं शीलो में तुम्हारे लिए यहावे से विनती कर निर्णय लूंगा। तब वे लोग उस देश में गए और पूरे देश में घूमे तथा नगरों के अनुसार 7 भागों में इसके बारे में पुस्तक में लिखा, और वे शीलो के पड़ाव में यहोशू के पास वापस आए। यहोशू ने उधर उनके लिए यहावे से विनती की और इज़राइल के लिए उनके भागों के अनुसार भूमि को बांट दिया। बिन्यामीन की सीमा। भूमि का सबसे पहला हिस्सा बिन्यामीन गोत्र को मिला। उनके परिवारों की संख्या के अनुसार चिट्ठी डाली गई। उन्हें यहूदा तथा योसेफ के गोत्रों के बीच की भूमि पर अधिकार दिया गया। उत्तर दिशा में उनकी सीमा यर्दन से होते हुए यरीखो के उत्तरी ढाल से होकर पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए पश्चिम दिशा में मिल जाती है और बेत आवेन पर जाकर रुक जाती है। वहां से लूज की ओर से होकर बेथेल से दक्षिण दिशा में बढ़ती है, जहां से अटारोत अद्धर जो पहाड़ी के निकट है और बेत होरोन के दक्षिण में है, वहां से पश्चिम से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और किरियत बाल पर जाकर समाप्त होती है, जो नगर यहूदा गोत्र के अधीन था और पश्चिमी सीमा में है। दक्षिण की सीमा किरियत यारीम से शुरू होकर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए नेफ्तोआ जल के सोते तक पहुंचती है। वह सीमा बढ़ती हुई बेन हिन्नोम घाटी में स्थित पहाड़ी के पास पहुंचती है, जो उत्तर में रेफाइम की घाटी में है, और हिन्नोम दक्षिण में यबूसियों का ढाल है, जो एन रोगेल की ओर बढ़ जाती है। यह उत्तर दिशा से होती हुई एन शेमेश से गलीलोत पहुंचती है, जो अद्दुमीम चढ़ाई के पास है। वहां से सीमा रियूबेन के पुत्र बोहन की शीला की ओर बढ़ती है। यह सीमा अराबा के ढाल की ओर बढ़कर उत्तर की ओर से होकर घाटी में पहुंचती है। सीमा आगे बढ़कर बेत होगला की बाहरी सीमा से होती हुई उत्तर की ओर जाती है, जो लवन सागर की उत्तरी खाड़ी में जाकर यर्दन नदी के दक्षिणी मुहाने पर मिल जाती है। यर्दन नदी इसकी पूर्वी सीमा थी। यह उनके परिवारों एवं इसकी चारों ओर की सीमा के अनुसार बिन्यामीन वंश का हिस्सा था। बिन्यामीन के गोत्र तथा उनके परिवारों के अनुसार उन्हें दिए गए नगर यह थे, यरीखो, बेत होगला, एमेकत सितस, बेत आराभा, सेमाराइम, बेथेल, अवीम, पारा, ओफ्रा, कफर अमोनी, ओफनी तथा गेबा। ये सभी 12 नगर उनके गांवों सहित गिबियोन, रामा, बैरोत, मितसफे, कफीरा, मोत्सा, रेकेम, यिरपाइल, थरला, तिसला, एलेफ तथा यबूसी नगर अर्थात यरूशलेम, गिबिया तथा किरियत ये 14 नगर उनके गांवों सहित बिन्यामीन वंश को उनके परिवारों के अनुसार मिला हुआ हिस्सा यह था।
यहोशू अध्याय 19।
शिमोन की सीमा। दूसरा पासा शिमोन गोत्र के नाम पड़ा। शिमोन वंशजों के कुलों के नाम उनके परिवारों के अनुसार उनकी मीरास यहूदा गोत्रजों की मीरास के मध्य हो गई। परिणाम स्वरूप मीरास के रूप में उन्हें बेशरबा अथवा शीबा, मौलाधा, आजर शुअल, बाला, एजेम, एलतोलद, बतूल, होरमा, जिकलाग, बेत मरकाबोत, आजर सूसा, बेत लबाओथ तथा शारुहेन, उनके गांवों सहित 13 नगर, एइन, रिमोन, एतेर तथा आशान, 4 नगर उनके गांवों सहित। इनके अतिरिक्त इन सभी नगरों के आसपास के गांव भी, जो बालात बेयर नेगेव की सीमा तक फैले हुए थे। यह शिमोन गोत्र के कुलों की उनके परिवार के अनुसार दी गई मीरास थी। शिमोन को दी गई यह मीरास यहूदा को दी गई मीरास में से ली गई थी, क्योंकि यहूदा को दिया गया क्षेत्र उनके लिए अत्यंत विशाल हो गया था। इस प्रकार शिमोन वंशजों ने यहूदा की मीरास के मध्य अपनी मीरास प्राप्त की। जेबुलून की सीमा। पासा फेंकने पर तीसरा अंश जेबुलून वंशजों के लिए उनके परिवारों के अनुसार निकला। उनकी मीरास की सीमा सारिद तक जा पहुंची। इसके बाद सीमा पश्चिम में माराला की दिशा में बढ़ गई। तब इसने दबेशेत का स्पर्श किया और फिर सीमा योकनाम की निकटवर्ती सरीता तक पहुंची। तब सीमा सारिद से मुड़कर पूर्व में सूर्यदेह की दिशा में आगे बढ़ते हुए किसलोत ताबोर को स्पर्श किया। यह आगे बढ़ी और दाबरत तथा याफिया पहुंची। वहां से यह पूर्व में सूर्यदेह की दिशा में बढ़ती चली गई और गात हेफेर एत काजीन पहुंची और रिमोन की ओर बढ़ गई, जो नेहा तक विस्तृत है। यह सीमा उत्तर में हन्नाथोन की परिक्रमा कर यिफ्तेल एल की घाटी में जाकर समाप्त हो गई। इसमें कट्टात, नहलाल, शिमरोन, येदेला तथा बेथलेम भी सम्मिलित है। ये 12 नगर इनके गांवों के साथ। ये नगर इनके गांव के सहित जेबुलून वंशजों को उनके परिवार के अनुसार प्राप्त मीरास थी। इसाखार की सीमा। चौथा पासा इसाखार के पक्ष में पड़ा। इसाखार के गोत्र के पक्ष में उसके परिवारों के अनुसार इसकी सीमा में था येज्रील तथा इसमें सम्मिलित थे कसुल्लोत, शूनेम, अफारैम, सियोन, अनाहरत, रबीत, किशोन, एबेज, रेमेत, एन गन्नीम, एन हद्दा तथा बेतपत्सेत्स। सीमा ताबोर, शहद सीमा तथा बेत शेमेस पहुंची और उनकी सीमा यर्दन पर जा समाप्त हो गई। ये इनके गांवों के सहित 16 नगर थे। ये नगर इनके गांव के सहित इसाखार गोत्र को उनके परिवारों के अनुसार दी गई मीरास थी। आशेर की सीमा। पांचवा पासा आशेर गोत्र के नाम उनके परिवारों के अनुसार पड़ा। उनकी सीमा थी एलकत, अली, बेटेन, अक्षाफ, अलमिलेक, अमआद तथा मिशाल। यह पश्चिम में कर्मेल तथा शीहोर लिबनात तक पहुंची थी। तब यह पूर्व की ओर बेत दागोन की ओर मुड़कर जेबुलून पहुंच गई और वहां से यिफ्तेल घाटी को और फिर उत्तर की ओर बेत एमेक तथा नई एल को। वहां से यह उत्तर में काबुल, एब्दोन, रेहोब, अम्मोन तथा काना होते हुए बढ़कर वृहत्तर सीदोन पहुंचती है। वहां सीमा रामा तथा गढ़ नगर सोर की ओर बढ़ती है। फिर यह सीमा होसा की ओर बढ़ती है और अंततः अकजीब क्षेत्र में समुद्र पर जाकर समाप्त हो जाती है। तब इसमें उमा, अफेक तथा रेहोब भी सम्मिलित थे। 22 नगर जिनके साथ सम्मिलित थे इनके गांव। यह आशेर गोत्र को उनके परिवारों के अनुसार दी गई मीरास थी। ये नगर तथा उनके साथ इनके गांव भी। नफ्ताली की सीमा। छठा पासा नफ्ताली वंशजों के पक्ष में पड़ा। नफ्ताली वंशजों के लिए उनके परिवारों के अनुसार उनकी सीमा प्रारंभ हुई थी हेलेफ से, साननीम के बांज वृक्ष से, आदामी नेकेब यबनेल से लेकर लक्कूम तक और यर्दन नदी पर जाकर समाप्त हो गई। उसके बाद सीमा पश्चिम में अजनोत ताबोर की ओर मुड़ गई और बढ़ते हुए वहां से हुक्कोक पहुंची। वहां से वह जेबुलून की ओर बढ़ी जो दक्षिण में है। वहां उसने पश्चिम में आशेर को स्पर्श किया तथा पूर्व में यर्दन तटवर्ती यहूदिया को। वहां ये गढ़नगर थे, जिद्दीम, जेर, हम्मात, रक्कत, किनेरेत, अदामा, रामा, आजोर, केदेश, एद्री, एन हाजेर, इरोन, मिगदलेल, होरेम, बेथनात तथा बेत शेमेश। इनके गांवों सहित ये 19 नगर। यह उनके परिवारों के अनुसार नफ्ताली गोत्र को दी गई मीरास थी। ये सभी नगर उनके गांव के साथ। दान की सीमा। सातवां पासा दान गोत्र के कुलों के पक्ष में उनके परिवारों के अनुसार पड़ा। उनकी मीरास की सीमा थी जोरा तथा एश्ताउल, ईर शेमेश, शाल अबीन, अयाजालोन, यथला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एलतके, गिबथोन, बालात, येहूद, बेन बरक, गत रिमोन, मियरकोन अर्थात यरकोन की जल राशि, रक्कोन तथा योपा से लगी हुई सीमा। दान के वंशजों की सीमा इनके भी आगे गई है, क्योंकि दान वंशजों ने लेशेम पर आक्रमण किया और उसे अधीन कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस पर तलवार का प्रहार किया, उन पर अधिकार कर वे उसमें बस गए और उसे अपने पूर्वज के नाम के आधार पर लेशेम दान नाम दिया। ये नगर उनके गांव के साथ दान के गोत्र की उनके परिवारों के अनुसार उनकी मीरास हो गए। यहोशू की सीमा। जब मीरास के लिए सीमा के अनुसार बंटवारे की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, इसराइल वंशजों ने नून के पुत्र यहोशू को अपने मध्य एक मीरास प्रदान की। यहावे के आदेश के अनुसार उन्होंने यहोशू को वही नगर प्रदान किया जिसकी उन्होंने याचना की थी, एफ्राइम के पर्वतीय प्रदेश में तिम्नत सेरा। यहोशू ने इस नगर का निर्माण किया और वहीं बस गए। ये ही है वे क्षेत्र जो पुरोहित एलियाजर, नून के पुत्र यहोशू तथा इसराइल वंशजों के गोत्रों के परिवारों के प्रधानों ने शीलो में यहावे के समक्ष मिलन वाले तंबू के प्रवेश पर आवंटित की। इस प्रकार समस्त भूमि का विभाजन संपन्न हो गया। यहोशू अध्याय 20। शरण के शहर। फिर यहावे ने यहोशू से कहा, इसराइल वंश से कहो कि मैंने मोशे के द्वारा जैसा तुमसे कहा था कि अपने लिए शरण के शहर बनाओ, ताकि यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में किसी की हत्या हो जाए तब विरोधियों से अपने आप को बचाने के लिए उस शरण के शहर में जाकर छिप सके। वो व्यक्ति अपनी भूल चूक को बुजुर्गों को बताए और वे उसे नगर के अंदर ले ले और उसे ठहरने को जगह दे, ताकि वह उनके साथ रहने लगे। यदि हत्या का विरोधी उसका पीछा करता है तो वे उस व्यक्ति को विरोधी के हाथ में ना छोड़े, क्योंकि उससे यह हत्या जानबूझकर नहीं हुई है और ना उनके बीच कोई दुश्मनी थी। हत्यारा उस नगर में तब तक रह सकता है जब तक वह सभा में न्याय के लिए खड़ा ना हो जाए, या जब तक उस समय के महापुरोहित की मृत्यु ना हो जाए। उसके बाद ही वह हत्यारा अपने घर जा सकता है। इसके लिए उन्होंने नफ्ताली के पर्वतीय प्रदेश के गलील में केदेश, एफ्राइम के पर्वतीय प्रदेश में शेकेम तथा यहूदिया के पर्वतीय प्रदेश में किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन को शरण के शहर निश्चित किया, और यर्दन के पार यरीखो के पूर्व में रियूबेन के गोत्र के मैदानी निर्जन प्रदेश में बेजर, गाद के गोत्र के गिलाद के रामोत तथा मनशशे गोत्र के बाशान के गोलान भी चुने गए। ये सभी नगर उन इसराइलियों तथा विदेशी लोगों के लिए हैं जिनसे अनजाने में किसी की हत्या हो जाती है, वह यहाँ आ जाए और सुरक्षित रहे, ताकि विरोधी उसको मार ना सके। जब तक सभा के सामने खूनी को नहीं लाया जाता तब तक वह व्यक्ति शरण शहर में ही रह सकता है। यहोशू अध्याय 21। लेवियों के लिए नगर। लेवी परिवारों के प्रमुख पुरोहित एलियाजर, नून के पुत्र यहोशू तथा इसराइली गोत्रों के मुखियों के पास गए। कनान देश के शीलों में उन्होंने उनसे यह बात कही, मोशे के द्वारा यहावे ने हमसे कहा कि हमें हमारे निवास के लिए नगर दिया जाएगा और इन नगरों के आसपास हमारे पशुओं को चराने की जगह भी होगी। तब इसराइल वंश ने यहावे के आदेश के अनुसार लेवियों को अपने हिस्से में से नगर दिए, जिनके आसपास की चरागाह की भूमि भी थी। पहला नाम कोहात के परिवारों का आया, जो अहरोन वंश के लेवियों में से थे। यहूदा, शिमोन तथा बिन्यामीन गोत्र को बांटी गई भूमि में से 13 नगर उन्हें मिले। कोहात के कुछ लोगों को एफ्राइम, दान तथा मनशशे के आधे गोत्र की भूमि में से 10 नगर मिले। गेरशोन वंश को इसाखार, आशेर, नफ्ताली गोत्रों की भूमि में से तथा बाशान में मनशशे के आधे गोत्र की भूमि में से कुल 13 नगर मिले। मेरारी वंश को उनके परिवारों के अनुसार रियूबेन, गाद तथा जेबुलून के गोत्रों से 12 नगर मिले। इसराइलियों ने लेवियों को पशु चराने के लिए भी नगर दिए, जैसा मोशे को यहावे का आदेश था। उन्होंने कुछ नगर यहूदा तथा शिमोन गोत्र के कुलों को दिए। ये अहरोन वंश, जो कोहातियों के परिवारों में से लेवी वंश के थे, पहला नाम उन्हीं का आया था। तब उन्होंने उन्हें यहूदिया के पर्वतीय प्रदेश में उनके आसपास के जगह चरागाह सहित किरियत अरबा नगर दे दिया। अरबा नामक व्यक्ति अनाक अर्थात हेब्रोन का पिता था, परंतु नगर के खेत तथा इसके गांव उन्होंने यफूने के पुत्र कालेब को दे दिए कि ये उनकी अपनी भूमि हो। उन्होंने अहरोन के वंशजों को ये नगर दिए, हेब्रोन जो शरण शहर था, और लिबना, यत्तीर, एशतमो, होलोन, दबीर, एइन, यूथा और बेत शेमेश को उनके चराइयों के साथ ये नगर भी दे दिए गए। इस प्रकार दो गोत्रों के हिस्से में से यह 9 नगर दिए गए। बिन्यामीन गोत्र से गिबियोन, गेबा, अनाथोत, अलमोन को चराइयों सहित 4 नगर दिए गए। इस प्रकार अहरोन वंश के पुरोहितों के लिए कुल 13 नगर उनके चराइयों सहित अलग कर दिए गए। तब कोहात वंश को, जो लेवी थे, तथा कोहात के बचे हुए पुरोहितों को एफ्राइम गोत्र से नगर दिए। उन्होंने इन्हें एफ्राइम के पर्वतीय प्रदेश से शेकेम, जो मनुष्य के हत्यारे के लिए ठहराए शरण शहर, और गेजेर, किबजेम तथा बेत होरोन और इसके चराइयों के साथ 4 नगर दिए। दान के गोत्र से एल्तके, गिबथोन, एजालोन, गथरीमोन, उनके चराइयों के साथ 4 नगर दिए। मनशशे के आधे गोत्र में से उन्होंने उन्हें तानक और गथरीमोन, उनके चराइयों के साथ 2 नगर दिए। कोहात वंश के बचे हुए परिवारों को 10 नगर चराइयों सहित दिए गए। गेरशोन वंश को, जो लेवी गोत्र से थे, मनशशे के आधे गोत्र में से बाशान का गोलान, जो हत्यारे के लिए निश्चित शरण शहर था, और उसके चराइयों सहित बैशत्रा, उसके चराइयों सहित 2 नगर दिए। इसाखार के गोत्र में से किशियोन, दाबरत, यरमूत और एन गन्नीम, उसके चराइयों सहित 4 नगर दिए। आशेर के गोत्र से मिशाल, अब्दोन, हेलकत तथा रेहोब, उनके चराइयों सहित 4 नगर दिए। नफ्ताली गोत्र से उन्होंने उन्हें गलील में केदेश, जो हत्यारे के लिए निश्चित शरण शहर था, अम्मोथ दोर तथा करतान, उनके चराइयों सहित 3 नगर दिए। उनके परिवारों के अनुसार गेशोन वंश को कुल 13 नगर उनके चराइयों सहित दिए। मेरारी वंश के परिवारों को, जो लेवी गोत्र से बचे हुए थे, उन्होंने जेबुलून के गोत्र से योकनाम करता, दिमना तथा नहलाल, सबको चराइयों सहित 4 नगर दे दिए। रियूबेन के गोत्र से उन्होंने उन्हें बेजर, यहत्स, केदेमोत तथा मेफात, उनके चराइयों सहित 4 नगर दिए। गाद के गोत्र से उन्होंने उन्हें रामोत गिलाद, जो हत्यारे के लिए निश्चित शरण शहर था, उसके चराई के सहित महानाइम, एशबोन तथा याजर, उनके चराइयों सहित कुल 4 नगर दिए। ये सभी नगर उनके परिवारों के अनुसार मेरारी वंश और बचे हुए लेवियों के हो गए। उनके हिस्से में कुल 12 नगर आए। इसराइल वंश के मध्य लेवियों के हिस्से में उनके चराइयों सहित 48 नगर आए। इन सभी नगरों के चारों ओर हरियाली थी। यह इन सभी नगरों के लिए सच था। यहावे ने इसराइल को वह पूरा देश दे दिया जिसकी शपथ उन्होंने उनके पूर्वजों से की थी। उन्होंने इस देश पर अपना अधिकार कर लिया और वे इसमें रहने लगे। यहावे द्वारा उन्हें चारों ओर से शांतिपूर्ण वातावरण मिला। जैसी शपथ यहावे ने उनके पूर्वजों से की थी, कोई भी शत्रु उनके सामने ठहर ना सका। यहावे ने सभी शत्रु उनके अधीन कर दिए। इसराइल वंश से यहावे द्वारा किया गया एक भी वायदा पूरा हुए बिना ना रहा। सब वायदे यहावे ने पूरे किए।
यहोशु अध्याय 22। यर्दन के पूर्व के कुल। तब यहोशु ने रियूबेन और गाद के गोत्र तथा मनशशे के आधे गोत्र को बुलवाया और उनसे कहा, यहावे के सेवक मोशे ने जो आज्ञाएं तुम्हें दी थी, तुमने उन सब का पालन किया तथा मेरी भी सब बातों को माना है। तुमने बीते दिनों से आज तक अपने भाई बंधुओं की बुराई नहीं की, परंतु तुमने यहावे अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेशों को माना है और अब उनसे की गई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे भाई बंधुओं को शांतिपूर्ण और आरामदायक वातावरण दिया। अब तुम अपने तंबू में जाओ जिसका अधिकार तुम्हें दिया गया है, जो तुम्हें यर्दन के पार यहावे के सेवक मोशे द्वारा मिला है। तुम मोशे द्वारा दिए गए आदेशों व नियमों को सावधानी से मानते रहना और यहावे अपने परमेश्वर से प्रेम करना, उनकी विधियों को मानना, उनके प्रति एक मन होकर रहना तथा उनकी सेवा पूरे हृदय से करते रहना। यह कहते हुए यहोशु ने उन्हें आशीष देकर विदा किया और वे सब अपने अपने तंबू में चले गए। मोशे ने मनशशे के आधे गोत्र को बाशान में संपत्ति दी थी, किंतु अन्य आधे गोत्र को यहोशु ने यर्दन के पश्चिम में उनके बंधुओं के साथ भूमि दी थी। यहोशु ने उन्हें उनके तंबू में जाने को कहा और यहोशु ने उन्हें आशीष देकर विदा किया। यहोशु ने कहा, अपने अपने तंबू में से संपत्ति एवं पशु, चांदी, सोना, कांसा, लोहा तथा वस्त्र को लेकर आओ और अपने भाई बंधुओं के साथ शत्रुओं से लूटी गई सामग्री बांट लो। तब रियूबेन, गाद तथा मनशशे के आधे गोत्र अपने अपने घर को चले गए और कनान देश में शिलो पर जाकर इसराइल वंश से अलग हो गए और गिलाद देश की ओर बढ़ गए, जहां उनकी संपत्ति थी जिसे उन्होंने मोशे के द्वारा यहावे से पाया था। जब वे यर्दन पहुंचे जो कनान देश में है, रियूबेन, गाद तथा मनशशे के आधे गोत्र के लोगों ने यर्दन के तट पर एक वेदी बनाई जो बहुत बड़ी थी। जब इसराइलियों को यह पता चला तो वे कहने लगे, देखो, रियूबेन, गाद तथा मनशशे के आधे गोत्र ने कनान देश के द्वार पर एक वेदी बनाई है जो यर्दन में उस ओर है, जो इसराइल के वंश की संपत्ति है। जब इसराइल वंश ने यह सुना तब पूरा इसराइल शिलो में उनसे युद्ध करने के इच्छा से जमा हुआ। तब इसराइल वंश ने एलियाजर के पुत्र फिनिहास को गिलाद देश में रियूबेन, गाद तथा मनशशे के आधे गोत्र से मिलने के लिए भेजा। उसके साथ उन्होंने 10 प्रधान भी भेजे जो इसराइल के हर गोत्र के परिवार की ओर से एक एक था। उनमें से हर एक इसराइल के पूर्वजों के घरानों का प्रधान था। इन सबने गिलाद में रियूबेन, गाद गोत्र तथा मनशशे के आधे गोत्र से मिलकर उनसे कहा, यहावे की पूरी प्रजा की ओर से यह संदेश है, इसराइल के परमेश्वर के प्रति तुमने गलत काम क्यों किया? तुमने उनके वचन पर चलना छोड़ दिया और तुमने अपने लिए एक वेदी बनाई है। तुमने यहावे के विरुद्ध पाप किया है। क्या पेयोर का अपराध कम था जिससे हम अब तक बाहर ना आ सके, जिसके कारण यहावे के लोगों में महामारी फैल गई थी? क्या तुम्हें भी यहावे के पीछे चलना छोड़ना पड़ रहा है? यदि आज तुम लोग यहावे के विरुद्ध विद्रोह करोगे तो वह इसराइल की सारी प्रजा से रूठ जाएंगे। फिर भी यदि तुम्हारा यह देश अशुद्ध है
तो इस देश से चले जाओ जो यहावे के अधीन है, जहां यहावे की उपस्थिति है, और हमारे मध्य आकर बस जाओ। बस यहावे हमारे परमेश्वर की वेदी के बदले अपने लिए वेदी बनाकर यहावे तथा हमारे विरुद्ध विद्रोह मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं कि जेरा के पुत्र आखान ने भेंट की हुई वस्तुओं के संबंध में छल किया और पूरे इसराइल पर दंड आया? उसकी गलती के कारण केवल उसकी ही मृत्यु नहीं हुई। यह सुन रियूबेन तथा गाद गोत्र और मनशशे के आधे गोत्र ने इसराइल के परिवारों के प्रधानों को उत्तर दिया, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर यहावे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है यहावे, वह सर्वज्ञानी है। और इसराइल को भी यह मालूम हो जाए कि यदि यह विद्रोह के उद्देश्य से किया गया है और यदि यह यहावे के प्रति धोखा है तो आज आप हमें ना छोड़े। यदि हमने इस वेदी को यहावे से अलग होने के लिए किया है या इसलिए कि इस पर होमबलि, अनबलि अथवा मेल बलि चढ़ाए तो स्वयं ही यहावे हमसे इसका हिसाब ले। यह करने के पीछे हमारी यह इच्छा थी भविष्य में कहीं वह समय ना आ जाए जब आपके बच्चे हमारे बच्चों से कहें, इसराइल के परमेश्वर यहावे से तुम्हारा क्या लेना देना है, क्योंकि यहावे ने तुम्हारे तथा हमारे बीच में यर्दन को एक सीमा बना दिया है। तुम जो रियूबेन तथा गाद वंश के हो, यहावे में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर आपकी संतान हमारी संतान को यहावे के प्रति, जो भय और आदर के योग्य है, उससे दूर कर देगी। तो इसलिए हमने सोचा है हम एक वेदी बनाए जो होमबलि और मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि यह आपके तथा हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के बीच गवाह हो कि हम अपनी होम बलियों तथा मेल बलियों के द्वारा यहावे के समक्ष उनकी सेवा आराधना करेंगे। और आपकी संतान हमारी संतान से कभी यह ना कहे, तुम्हारे यहावे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब हमने यह विचार भी किया कि हो सकता है कि भविष्य में यदि वे हमसे अथवा हमारी पीढ़ी के लोगों से यह पूछे, तब उनके लिए हमारा उत्तर होगा, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया यहावे की वेदी देख लो, जो ना तो होम बलि के लिए है और ना ही मेल बलि के लिए, परंतु यह हमारे और तुम्हारे बीच एक गवाह बनने के लिए है। कभी ऐसा ना हो कि हम यहावे हमारे परमेश्वर की वेदी को छोड़कर होम बलि, अनबलि तथा मेल बलि चढ़ाने के लिए दूसरी वेदी बनाकर यहावे से दूर हो जाए, उनके पीछे चलना छोड़ दें। जब पुरोहित फिनियास, सभा के नेताओं तथा इसराइल के परिवारों के प्रधानों ने, जो उस समय वहां थे, रियूबेन, गाद तथा मनशशे के वंश से जब यह सब सुना, तब वे खुश हो गए। एलियाजर के पुत्र फिनिहास ने रियूबेन, गाद तथा मनशशे वंश को बताया, आज हमें विश्वास हो गया है कि यहावे हमारे साथ हैं, क्योंकि तुमने यहावे की दृष्टि में कोई बुरा नहीं किया है। तुमने इसराइल वंश को यहावे के द्वारा सजा पाने से बचा लिया है। तब एलियाजर के पुत्र पुरोहित फिनिहास तथा सभी प्रधान रियूबेन तथा गाद वंश के देश, गिलाद से इसराइल वंश के देश कनान को लौट गए और उन्हें सब बात बता दी। सब बात सुनकर इसराइल वंशी खुश हो गए। उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और उन्होंने उस देश को, जिसमें रियूबेन तथा गाद वंश के लोग रह रहे थे, नष्ट करने के उद्देश्य से उनसे युद्ध करने का विचार छोड़ दिया। रियूबेन एवं गाद वंश ने उस वेदी को एद अर्थात स्मारक बना दिया, क्योंकि यह वेदी यहावे परमेश्वर तथा उनके मध्य एक यादगार थी। यहोशू अध्याय 23। इसराइली नेताओं से यहोशू की विदाई। जब यहावे ने इसराइल को उनके पड़ोसी राष्ट्रों के शत्रुओं से बचाया, बहुत समय बीत गया और यहोशू बहुत बूढ़ा हो गया। तब यहोशू ने समस्त इसराइल के नेताओं, प्रधानों, प्रशासकों तथा अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तुमने वह सब देख लिया है जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सभी राष्ट्रों के साथ किया है। वास्तव में यह यहावे तुम्हारे परमेश्वर ही थे जो तुम्हारी ओर से लड़ रहे थे। यह याद रखो कि मैंने यर्दन से लेकर भूमध्य सागर तक के देशों को तुम्हारे गोत्रों का भाग बनाया है, बचे हुए भाग को छोड़ दिया है। यहावे तुम्हारे परमेश्वर उन्हें तुम्हारे बीच से निकाल देंगे और उन्हें तुमसे अलग कर देंगे और तुम उनके देश पर अधिकार कर लोगे, ठीक जैसा यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने कहा था। दृढ़ होकर मोशे द्वारा लिखे व्यवस्था और नियमों का पालन करना, इससे ना तो दाईं ओर और ना बाईं ओर मुड़ना। तुम इन लोगों से मत मिलना जो अब तक तुम्हारे बीच में है। तुम उनके देवताओं का नाम मत लेना और ना उन देवताओं की शपथ लेना, ना उनकी आराधना करना और ना उनको दंडवत करना, बल्कि तुम यहावे अपने परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास में बने रहना जैसा तुम आज तक करते आए हो। याद रहे, यहावे ने बड़े एव बलवंत लोगों को तुम्हारे बीच से निकाला है और कोई तुम्हारे सामने ठहर ना सका। तुम में से एक ही व्यक्ति 1,000 शत्रुओं को मारने के लिए काफी है, क्योंकि तुमसे किए वायदे के अनुसार यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ते आए हैं। इसलिए यहावे तुम्हारे परमेश्वर के प्रति तुम्हारा प्रेम दृढ़ बना रहे। यदि तुम उन लोगों से दोस्ती बढ़ाओगे जो अब तक तुम्हारे बीच में रह रहे हैं, तुम्हारे तथा उनके बीच गहरे संबंध हो जाएंगे, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे, तो निश्चयतः यहावे तुम्हारे परमेश्वर इन राष्ट्रों को तुम्हारे बीच से नहीं निकालेंगे। ये जनता तुम्हारे लिए जाल तथा फंदा, तुम्हारी पसलियों पर लगी चाबुक तथा आंखों की चुभन साबित होंगे। अंत में यह अच्छी भूमि जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने दी है नष्ट हो जाएगी। अब मेरी मृत्यु समय निकट है। जिस मार्ग पर पृथ्वी के सभी को चलना है, हृदय तथा प्राणों की गहराइयों में तुम जान लो कि यहावे तुम्हारे परमेश्वर के मुंह से निकली हुई हर बात बिना पूरी हुई ना रही है। तुम्हारे लिए कही हुई सब बातें पूरी हुई है। फिर जिस प्रकार तुम्हारे विषय में यहावे तुम्हारे परमेश्वर द्वारा कही गई सब भली बातें पूरी हुई हैं, उसी प्रकार यहावे सभी कष्ट तुम पर तब तक डालते रहेंगे जब तक तुम इस देश से जो तुम्हें यहावे तुम्हारे परमेश्वर द्वारा दिया गया है नष्ट ना हो जाओ। अगर तुम तुम्हारे परमेश्वर की वाचा तोड़ोगे जिसका आदेश उन्होंने तुम्हें दिया था, और तुम दूसरे देवताओं की वंदना करोगे, उनके सम्मान में झुकोगे, तब यहावे का दंड तुम पर आएगा और तुरंत ही तुम यहावे की ओर से दिए गए इस उत्तम देश से नष्ट हो जाओगे। यहोशू अध्याय 24। इज़राइल द्वारा यहावे के प्रति समर्पण का नवीकरण। यहोशू ने इज़राइल के सभी गोत्रों को शेकेम में जमा किया और इज़राइल के नेताओं, उनके प्रधानों, उनके प्रशासकों एवं अधिकारियों को बुलाया और वे सभी परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। सभी को यहोशू ने कहा, यहावे इज़राइल के परमेश्वर का संदेश यह है, पहले तो तुम्हारे पूर्वज अब्राहम तथा नाहोर के पिता तेहरा परात नदी के पार रहा करते थे। वे दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तब मैंने उस नदी के पार से तुम्हारे पूर्वज अब्राहम को पूरे कनान देश में घुमाया। मैंने उसके वंश को बढ़ाया, उसे पुत्र यत्साहक दिया, फिर यत्साहक को 2 पुत्र दिए, याकोब तथा एसाव। एसाव को मैंने सेईर पर्वत दे दिया, परंतु याकोब तथा उनके पुत्र मिस्र देश चले गए। तब मैं यहावे ने मोशे तथा अहरोन को उनके बीच भेजा। मैंने मिस्र देश पर विपत्तियां भेजी, फिर मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया। बाद में मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला और तुम लोग सागर तट पर जा पहुंचे। मिस्रवासी भी रथों तथा घोड़ों को लेकर तुम्हारा पीछा करते हुए लाल सागर तक पहुंच गए। तुम्हारी पुकार सुनकर मैंने तुम्हारे एव मिस्रियों के बीच में अंधकार कर दिया और समुद्र उनके ऊपर छा गया और वे सब उसमें डूब गए। स्वयं तुमने अपने आंखों से यह सब देखा कि मैंने मिस्र देश में क्या क्या किया है। तुम निर्जन प्रदेश में बहुत समय तक रहे। फिर मैं तुम्हें अमोरियों के देश में ले आया जो यर्दन के दूसरी ओर रहते थे। उन्होंने तुमसे युद्ध किया और मैंने उन्हें तुम्हारे अधीन कर दिया। तुमने उनके देश पर अधिकार कर लिया। तुम्हारे सामने मैंने उन्हें नाश कर दिया। तब मोआब के राजा ज़िप्पोर के पुत्र बालाक इज़राइल से युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने बेओर के पुत्र बिलाम को बुलाया कि वह तुम्हें शाप दे, किंतु मैंने बिलाम की एक ना सुनी। वह तुम्हें आशीष पर आशीष देता गया, इस प्रकार मैंने तुम्हें उसके हाथों से बचा लिया। तुम लोगों ने यरदन नदी पार की और यरीखो जा पहुंचे। यरीखो के प्रधानों ने तुमसे युद्ध किया, इनके अलावा अमोरियों, परिजियों, कनानी और हित्तियों, गिरगाशियों, हिव्यों तथा यबूसियों ने भी तुमसे युद्ध किया और सबको मैंने तुम्हारे अधीन कर दिया। तब मैंने तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेज दिए, उन्होंने अमोरियों के उन दो राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। यह विजय ना तो तुम्हारी तलवार की और ना तुम्हारे धनुष की थी। मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया है जिसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की, ऐसे नगर जिनको तुमने नहीं बनाया, जहां अब तक रह रहे हो। तुम उन दाख की तथा जैतून के बगीचे के फलों को खा रहे हो जिनको तुमने नहीं लगाया। अब यहावे के प्रति आदर, भय और पूरे मन तथा सत्य से उनकी सेवा करो। उन देवताओं को छोड़ो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज उस समय तक करते रहे जब वे उस नदी के पार और मिस्र देश में रहते थे। आराधना केवल यहावे ही की करो। यदि इस समय तुम्हें यहावे की सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा है तो आज ही यह निर्णय कर लो कि किसकी सेवा करोगे तुम, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के पार किया करते थे, या अमोरियों के उन देवताओं की जिनके देश में तुम अब रह रहे हो। जहां तक मेरा और मेरे परिवार की बात है, हम तो यहावे ही की सेवा वंदना करेंगे। यह सुन उपस्थित लोगों ने कहा, ऐसा कभी ना होगा कि हम यहावे को छोड़ उन देवताओं की सेवा वंदना करें। हमारे परमेश्वर यहावे ही है जिन्होंने हमें तथा हमारे पूर्वजों को मिस्र देश से बाहर निकाला है। वही है जिन्होंने हमारे सामने अनोखे काम किए तथा हमारी पूरी यात्रा में हम सबके साथ थे, जो हमें मार्ग में मिले थे और हमारी रक्षा की। यहावे ने ही हमारे बीच से अमोरियों को और सब जातियों को निकाले। तब तो हम भी यहावे ही की सेवा वंदना करेंगे, क्योंकि वही है हमारा परमेश्वर। तब यहोशू ने लोगों से कहा, यहावे की सेवा वंदना करने की ताकत तुम लोगों में नहीं है। वह पवित्र परमेश्वर है, वह ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है। वह ना तो तुम्हारे अपराधों को और ना ही तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। अब यदि तुम यहावे को छोड़कर उन देवताओं की उपासना करोगे तो हालांकि अब तक तुम्हारा भला ही किया है, फिर भी वह तुम्हारे विरुद्ध हानि करेंगे और तुम नाश हो जाओगे। प्रजा ने यहोशू से कहा, ऐसा नहीं होगा, हम यहावे ही की सेवा वंदना करेंगे। तब यहोशू ने उनसे कहा, अपने आप के गवाह तुम खुद हो कि तुमने यहावे के पक्ष में निर्णय लिया है कि तुम उन्हीं की सेवा वंदना करते रहोगे। उन्होंने जवाब दिया, हम गवाह हैं। इस पर यहोशू ने कहा, तो अपने बीच से दूसरे देवताओं को दूर हटा दो और अपना हृदय यहावे इसराइल के परमेश्वर की ओर कर दो। लोगों ने यहोशू को उत्तर दिया, सेवा आराधना तो हम यहावे हमारे परमेश्वर ही की करेंगे और हम उन्हीं के आदेशों का पालन भी करेंगे। यहोशू ने उस दिन लोगों के साथ पक्का वादा किया तथा शेकेम में उनको नियम एवं विधि बताई। यहोशू ने वह सब परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया। फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर लेकर यहावे के पवित्र स्थान के निकट बांज वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। यहोशू ने सब लोगों से कहा, देखो यह पत्थर अब हमारे लिए गवाह होगा, क्योंकि इसने यहावे द्वारा हमसे कही बातों को सुन लिया है, इसलिए अब यही तुम्हारा गवाह होगा यदि तुम्हारा मन परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए। यह कहकर यहोशू ने लोगों को भेज दिया और सभी अपने अपने घर पर चले गए। यहोशू की मृत्यु एवं अंत्येष्टि। इसके बाद यहावे के सेवक नून के पुत्र यहोशू की मृत्यु हो गई। इस समय उनकी आयु 110 वर्ष की थी। उन्होंने उन्हें तिम्नत सेरा में उन्हीं की भूमि पर दफना दिया। वह जगह एफ्राइम के पर्वतीय क्षेत्र में गाश पर्वत के उत्तर दिशा में है। इसराइल जन यहोशू तथा यहोशू के बाद पुरनियों के सारे जीवन काल में यहावे की सेवा और स्तुति करते रहे। ये उन सभी महान कामों को अनुभव किए थे जो यहावे द्वारा इसराइल की भलाई के लिए किए गए थे। योसेफ की वे अस्थियां जो इसराइल वंश मिस्र देश से अपने साथ ले आए थे, उन्होंने इन्हें शेकेम में गाड़ दिया। यह वह जमीन थी जिसे याकोब ने शेकेम के पिता हामोर के पुत्रों से चांदी की 100 मुद्राएं देकर खरीदी थी। यह जमीन अब योसेफ वंश की मीरास हो गई थी। फिर अहरोन के पुत्र एलियाजर की मृत्यु हो गई, उन्होंने उसे गिबिया में गाड़ दिया। यह उसके पुत्र फिनिहास का नगर था जो एफ्राइम के पर्वतीय प्रदेश में उसे मिला था।